السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصلي على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك، وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ایک بخاری شریف کی حدیث میرے سامنے ہے، میں نے گزشتہ جمعرات کے درس میں، گزشتہ سے گزشتہ غالباً یا گزشتہ، اس کو بیان کیا. جب بھی آتا ہوں کراچی والوں کے لیے کچھ روحانی اور طبی پیکج لاتا ہوں. انسانیت کو نفع ہی مطلوب ہے. میری ذات سے اگر انسانیت کو نفع مل جائے تو اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو جائے. بس آپ سے اتنی درخواست یہ ہے کہ میرے لیے دعا یہ کیا کریں، اللہ میرا جذبہ اور نیت ٹھیک رکھے. جس کی طرف انگلیاں اٹھتی ہیں وہ دیکھو، ملک صاحب، میاں صاحب، چودھری صاحب، شیخ صاحب، حضرت صاحب، حکیم صاحب، تو جس کی طرف انگلیاں اٹھتی ہیں وہ شخص بہت خطرے میں ہوتا ہے اور بہت نازک معاملہ ہے. دنیا میں واہ واہ ہو جائے اور آخرت میں اگر واہ واہ نہ ہوئی تو معاملہ بہت گڑبڑ ہے. تو میرے لیے آپ دعا کیا کریں، اللہ پاک مجھے پار اتار دے، اخلاص عطا فرما دے، اپنی رضا عطا فرما دے اور میرے جذبے اور نیت کو سچا رکھے. میں ایک حدیث میں مبارکہ بخاری شریف کی ایک ہے، اس حدیث کا میں دو حدیثیں بیان کروں گا. پہلی حدیث جو بیان کر رہا ہوں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور حدیث ہے فرمایا کہ نماز کا کچھ حصہ گھروں میں پڑھ لیا کرو اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. نماز کا کچھ حصہ چھوڑ دیا کرو اور وہ گھروں میں پڑھا کرو اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. یعنی سنتیں اور بقیہ نماز تو گھر میں پڑھیں، فرض نماز مسجد میں پڑھیں. محدثین نے اس کی تشریح یہ کی ہے، لفظ ہے کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ. اور جو گھر قبرستان ہوتے ہیں وہاں جنات کا ڈیرا ہوتا ہے، وہاں شیاطین کا ڈیرا ہوتا ہے. قبرستانوں میں چور، اچکے، ہیروینی، نشائی، جیب تراش، ان کا ڈیرا ہوتا ہے، ان کا ڈیرا ہوتا ہے. ہمارے لاہور میں وہاں میں جس جگہ رہتا ہوں وہاں سامنے میلوں پھیلا ہوا ایک قبرستان ہے جسے میانی صاحب کا قبرستان کہتے ہیں. وہاں ایک وہ میرے پاس ایس ایچ او آیا اس تھانے کا، کہنے لگے جی ہر پولیس والے کی کوشش ہوتی ہے اس تھانے میں نہ لگے، کیوں یہاں لاشیں ملتی ہیں لوگ مار کے پھینک جاتے ہیں، یا بہت کرائم اور جرائم ہوتے ہیں، چھین کے قبرستان میں گم ہو جاتے ہیں، اور قبرستان کی بعض قبریں ایسی ہیں، اتنا گنجان قبرستان ہے کہ بعض اوقات آپ ایک جگہ بیٹھے رہیں گے ہفتوں وہاں سے بندہ نہیں گزرے گا. تو وہاں جا کے وہ چھپ جاتے ہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہاں کا ایس ایچ او نہ لگوں، اس علاقے کے تھانے کی ذمہ داری میرے پاس نہ ہو. اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اب ایک اور حدیث مبارکہ سنیے جس میں قبرستان کا تذکرہ ہے. آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اب دیکھیں، پہلی حدیث میں ہے کہ اپنی نماز کا کچھ حصہ چھوڑ دو گھر کے لیے، کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ دوسری حدیث میں مستند حدیث ہے، باقاعدہ میں نے اس کے، ہمارے مخلص ہیں، میں نے ان سے عرض کیا کہ اس کا حوالہ تلاش کریں، انہوں نے مجھے اس کے حوالے تلاش کر کے دیے، صحیح حدیث۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ قرآن نہ پڑھنے سے گھر میں جنات اور شیاطین ہوتے ہیں۔ اب ان دونوں حدیثوں کو اگر ملائیں تو ایک حدیث میں نماز ہے، دوسری میں قرآن ہے۔ آپ محسوس کر رہے ہیں؟ پہلی حدیث میں ہے کہ نماز کا کچھ حصہ گھر کے لیے چھوڑ دو، تو پہلی حدیث میں مطابق نماز ہے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ قرآن سورت بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے، تو قرآن کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ بقرہ، اور سب سے چھوٹی سورت کوثر۔ سب سے بڑی سورت بتائی کہ سب سے بڑی سورت جو ہے وہ پڑھو، سب سے بڑی سورت پڑھو، اور جو سب سے بڑی سورت پڑھے گا اس گھر سے شیاطین چلے جاتے ہیں۔ قبرستان گھر بن گیا تو اس گھر میں ویرانی ہے، اس گھر میں بے سکونی ہے، وہ گھر ہے، وہ بنگلہ ہے، وہ فارم ہاؤس ہے، وہ گزوں میں، ایکڑوں میں، مرلوں میں، کنالوں میں پھیلا ہوا ایک بہترین شاہکار ہے، تعمیر کا بھی، ترتیب کا بھی، لیکن وہ بے سکون زندگی ہے، وہ بے چین زندگی ہے، بے سکون زندگی۔ ایک بندہ ایک گھر کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا تھا، بہت کھٹکھٹایا، تو ساتھ والا پڑوسی نکلا تو وہ کہنے لگا کہ بھئی خیریت تو ہے، کس سے ملنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ان گھر والوں سے ملنا ہے، کہ جو گھر تو ویران پڑا ہے، بہت عرصے سے اس میں کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا گھر میں کمکمے ہیں، فانوس ہیں، لائٹیں ہیں، بڑا خوبصورت بنگلہ ہے، ہر چیز ہے۔ اس نے کہا سب کچھ ہے پر گھر ویران ہے، گھر تو انسانوں سے آباد ہوتا ہے، گھر کمکموں سے، پنکھوں سے، اے سی سے اور بیڈ سے اور ان چیزوں سے کہاں آباد ہوتا ہے۔ اچھا، اس نے کہا وہ کہاں چلے گئے؟ کہاں فلاں جگہ چلے گئے ہیں اس سوسائٹی میں، یہ گھر ویران ہے، یہ گھر بے آباد ہے، آج ہمارے گھر ویران ہیں، گھر ہے، گھر میں چیزیں ہیں، گھر میں افراد ہیں، گھر میں بچوں کے چہچہانے کی آواز ہے، بیماریوں نے، دکھوں نے، آپس پہ دلوں کے توڑنے، نفرتوں نے، رزق کی کمی نے، برکت کے ہٹ جانے میں گھر ویران ہو گئے اور قبرستان بن گئے۔ پھر جب قبرستان بن جاتے ہیں نا، تو قبرستان میں جا کے ایک وحشت سی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو قبرستان سے ڈرتے ہیں، وہاں جائیں بھی مجبوراً تو بس نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب قبرستان گھر بن جاتے ہیں پھر کہتے ہیں میرا دل گھر جانے کو نہیں کرتا، گھر میں جاتا ہوں تو اندر آواز آتی ہے بس نکل یہاں سے، اور پھر گھر کی ویرانیاں اور قبرستان گھروں سے نکالتی ہیں، گھر بے آباد ہوتے ہیں، تو گھر میں دل نہیں لگتا، گھر جو قبرستان بن گیا۔ معلوم ہوا جس گھر میں سجدے نہیں ہوں گے، جس گھر میں قرآن نہیں ہوگا، وہ قبرستان ہے۔ پھر قبرستان میں جنات آ جائیں، شیاطین آ جائیں، کتے وہاں قیام کرتے ہیں، نیولے وہاں قیام کرتے ہیں، سانپ وہاں قیام کرتے ہیں قبرستان میں، بچھو وہاں قیام کرتے ہیں، ہر مخلوق ڈسنے والی اور भौंकने वाली वो कहां क्याम करती है, फिर अगर वो चीज वहां आ भी जाए तो क्या हारे जाए, कब्रिस्तान में उनका बसेरा कोई ऐब नहीं समझा जाता, ऐब नहीं समझा जाता। और ना कोई आज तक आपने मुहिम देखी होगी, सुनी होगी जी सांपों को निकालने की हुकूमत ने मुहिम चलाई है, कब्रिस्तान से सांपों को निकाल दिया जाए, गवर्नमेंट ने एक तरतीब चलाई है कुत्तों को निकाल दिया जाए, लोमड़ियों को निकाल दिया जाए, उनकी जाए पना है ही कब्रिस्तान वीराना होता है। इन जानिए मैं इस हदीस में वारका से कितने दिनों से घूम रहा हूं, और घूम इसलिए रहा हूं हर दूसरा तीसरा केस मेरे पास कब्रिस्तानी के साथ है, उजड़ा हुआ वीरान परेशान। कल के मोबाइल मैंने ऐसे मैसेज निकाला, मोबाइल बंद पड़ा हुआ था, मैंने ऐसे खोला और खोलते ही एक खातून का मैसेज आया कि हकीम साहब आज रात फिर मेरे साथ वही कुछ हो गया, वो नापाकी वाला मामला, मैं क्या करूं। औरतों की इस्मतें इज्जतें जिन्नाती और शैतानी दुनिया लूट रही है, बस कैसी केस आ रहे हैं, मेरे पास वाकयात ही वाकयात आ रहे हैं, जो मिंबर मुझे इजाजत नहीं देता, लफ्ज मेरे पास है नहीं, इल्म की कमी, अल्फाज की कमी है, कहां से लफ्ज ले आऊं कि मैं वो हालत बयान करूं जो मुझे खतों के जरिए और बयान के जरिए वो हालत मिलती है, मैं कहां से वो हालत ले आऊं, वो वाकयात कहां से ले आऊं, वो मुशाहदात कहां से ले आऊं। किसी सियाने ने एक बात समझदार ने कही थी, ये जो घरों के इर्द गिर्द दीवारें होती हैं और जो ताले होते हैं वे शोरफा के लिए होते हैं, चोरों के लिए नहीं होते, वो इसलिए ताले दीवारें गेट ग्रिलें और ये खारदार तारे कि अच्छे खासे शरीफ आदमी की तबीयत खराब ना हो और वो उसकी नीयत ना बदले, वरना चोर डाकू के लिए ये ताले तो कुछ नहीं होते। हमारे घरों के इर्द गिर्द से दीवारें खत्म हो गईं, ताले खत्म हो गए, वो हुस्सा वो हिसार वो दीवार वो डिफेंस वॉल्स वो जिंदगी की कंक्रीट की आरसीसी की बनी हुई चीजें, नूर की बनी हुई, नूरानियत की बनी हुई, रूहानियत की बनी हुई, वो फरिश्तों की ताकत, वो फरिश्तों की हिफाजत, वो फरिश्तों की ड्यूटियां, वो जिंदगी सारी की सारी हमारे इर्द गिर्द खत्म हो गए, निहत्ते वीरान फिर रहे हैं। किसी कुत्ते का जी चाहे आके काट ले, किसी सांप का जी चाहे आपके डस ले, किसी नेवले का जी चाहे आके झपट पड़े, किसी बिच्छू का जी चाहे हमें आके वो डस ले या दर्द दे दे, उसका हक बनता है। निहत्ता जो है हमें फरिश्तों की हिफाजत आएगी तो हमारी हिफाजत होगी, फरिश्तों का निजाम हमारे साथ होगा तो अल्लाह हमें बचा सकेगा। हदीस में यहां तक आता है, मफहूम अर्ज कर रहा हूं, हजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक आंख की हिफाजत के लिए 9 फरिश्ते हैं, अल्लाह पाक इसकी हिफाजत फरमाते हैं, अगर आंख से फरिश्तों की हिफाजत हट जाए, ये पानी का बुलबुला ही तो होता है। आपने देखा बाज लोगों की दाएं बाएं बड़े गड़े गहरे जख्मों और टांकों के निशान होंगे कि मोहतरम ये क्या हुआ, कहने लगे जी चोट लगी थी, आंख बच गई पर ये सारा हिस्सा मेरा जल गया या कट गया। हमारी जिंदगी का निजाम फरिश्तों की हिफाजत के साथ है, और इस हदीस मुबारका की सारी तशरी सारी तफसीर सारी तरतीब क्या है, वो ये है, सारी तशरीह सारी तरतीब वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर कब्रिस्तान न बने, वीराने न बने, वीरानियां जुदाइयां परेशानियां दिलों का तोड़ अंदर का रोग, तो कब्रिस्तान न बनाने के लिए 2 चीजें घर में लानी होंगी, एक सजदे और दूसरा कुरान। उस दिन अभी मैं जुमरात के इसी दर्स में, मेरा दर्स खत्म हुआ 2.25 घंटे मैंने बात की, मैंने कहा मुझे आप मजमे पे गुस्सा आ रहा है, मैं आपको जल्दी क्यों छोड़ रहा हूं, सर्दियों में गर्मियों में 9 बजे 9:15 बजे जमात होती थी, 11 बजे मैं जान छोड़ता था, और मैंने जान छोड़ दी 8:30 बजे जमात जो जल्दी हुई मगरिब की। अब मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं आप खड़े होके अपने मुशाहिदात बताएं, ये नेट पे आप देखेंगे दर्श में हमने मुशाहिदात बयान किए। एक साहब मुझसे कहने लगे कि आपने दर्श में बताया था कि कुरान पाक के खिलाफ बच्चियां खुद सीए बनाए मेरी बेटियों के रिश्ते हो गए। कुरान को इज्जत दी, कुरान को वकार दिया, हम लिबास के बगैर कैसे नजर आएंगे। मुझे कई लोग बताते हैं ये क्या ख्वाब होगा, मैंने अपने आप को ख्वाब में नंगा देखा। ख्वाब में नंगा देखें तो हमें तशवीश हो, शर्मिंदगी हो, एहसास हो, क्या कोई ख्वाब के बगैर नंगा हो जाए तो क्या शर्मिंदगी होगी। अपने आप को हम लिबास से ढांकते हैं, फिर एक लिबास के बाद दूसरा लिबास, मैंने बनियान पहनी, मैंने कमीज पहनी, ऊपर ये ओढ़नी ओढ़ी, फिर मैंने कहा शायद मैंने लिबास मुकम्मल पहना। कुरान को खिलाफ, कुरान के ऊपर अदब एहतराम। महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि मैं एक बादशाह की दावत पे गया, और जब बादशाह की दावत पे गया तो उसने कहा मुसलमान और नेक हुक्मरान है, इसके लिए कुरान पाक रख दूं। कहा कुरान पाक रख दिया कि अगर आप तिलावत करना चाहें तो। कहा सारी रात मैं इस कश्मकश में रहा कि कहीं इसके तरफ पांव ना हो जाए, पीठ ना हो जाए, बेअदबी ना हो जाए, कभी काऊं फैलाऊं, कभी पाऊं सुकेड़ूं, कभी करवट बदलूं, कभी ऊपर कभी नीचे। यूं ही सारी रात गुजर गई। बादस विशाल किसी ने मरने के बाद पूछा महमूद क्या बना, कहने लगे बस वही रात ही काम आई, उसी से बख्शिश का सामान बन गया। वही रात काम आई, वही रात काम आई। घरों से कुरान निकला। मैं कई वाकयात बयान किए, मैंने कई वाकयात सुने, कई लोगों से कई मुशाहिदात सुने कि हमारे घरों में सिसकियों की, रोने की, करहाने की, चीखने की आवाज। कई आमिल बुलाए, उनने कहा जिन्नात हैं, ये जलाओ वो जलाओ, वो करो वो करो। कई आए, उन्होंने तालियां बजाई, कुछ यूं किया, पर सिसकियों की आवाज ही नहीं जाती ही नहीं। तो मैंने उनसे अर्ज किया, मैंने कहा अल्लाह से मांगो कि अल्लाह तुम पे ये कैफियत खोल दे कि आवाज ही क्या है। और कुछ लोगों को मैंने कुछ अमल बताए कि ये पढ़ के सो जाओ तो अल्लाह खुद बखुद ही आपके सामने वो कैफियत खोल देगा, अल्लाह खुद ही कर देगा। तो वो कहने लगे कि सिसकियों की आवाज का पता चला ना जिन्नात की थी, ना किसी जिन की थी, देव की थी, कुछ भी नहीं थी, कुरान की सिसकियों की आवाज ही थी कि मौला लोगों ने मुझे दूर कर दिया तो इन्हें दूर कर दे, अल्लाह इन्होंने मुझे वीरान कर दिया तो इनको वीरान कर दे, या अल्लाह ये हमें भूले तो इनको भूल जा, इन्होंने हमें नहीं देखा मुझे नहीं देखा। कुरान कहता है अल्लाह इसको रहमत की नजर से इनको देखना छोड़ दे। सिसकियों की आवाज, कुरान के सिसकियों की आवाज, कुरान की सिसकियों की आवाज, कुरान की सिसकियों की आवाज। घर वीरान है, बड़े बंगले बनाए, बड़े शौक से, बहुत बड़ी सोसाइटी में जिंदगी की सारी पहुंची, जिंदगी का सारा सरमाया लगा दिया, पर कुछ ना बना। अंदर सौजन है, अंदर जलन है, अंदर बेसुकूनी है, अंदर बेचैनी है। उल्फत में बराबर है, वफा हो या जफा हो, हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मजा हो। हर चीज में लज्जत है अगर, और दिल में मजा ही नहीं है तो चीज में लज्जत ही क्या होगी। बेलज्जत चीजें, बेजायका चीजें, बेजौक चीजें, लोग तेरी गाड़ी को देख के पुरश आंखों से देखें, लोग तेरे बंगले को देख के हसरत से देखें, लोग तेरी घड़ी, तेरा मोबाइल, तेरा लिबास, तेरी जूती, तेरी जिंदगी को पुरशुकू आंखों से देखें, पर तेरे अंदर एक वीरानी है, वीरानी है, जब दिल ही बुझ गया है, क्या लुत्फ अंजमन का, जब दिल ही बुझ गया है उस अंजमन का लुत्फ ही क्या है। दिल तो अंदर से बुझा हुआ है। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान सच्चा, वही सच्ची, कुरान सच्चा, हदीस सच्ची, आखरत सच्ची, रब सच्चा, खातमुन नबीयीन सच्चे सच्चे सच्चों के सच्चे। मेरे आका ने फरमा दिया कि घर कब्रिस्तान है तो वो है फिर कुरान के छोड़ने से और सजदों के छोड़ने से। घर कब्रिस्तान है, रब काबा की कसम है, तुझे वहां कब्रें नजर ना आए, चादरें नजर ना आए, फूल नजर ना आए, लह नजर ना आए, वहां तुझे बेहतरीन गुल फूल कमकमे फानूस सोफे और बेड नजर आए। तेरी आंखों का धोखा है, तेरे सोचने का खुमार और गुमान है, वो कब्रिस्तान है। अगर वो कब्रिस्तान है तो फिर उस घर से तुझे खुशियां क्यों ना मिली, उस घर से तुझे सुकून क्यों ना मिला, उस घर ने तेरे अंदर चैन क्यों ना भरा, तेरी जिंदगी में सुख सुकून क्यों ना आया, तेरी जिंदगी में राहतें उल्फतें क्यों ना आई। मेरे पास कितने लोग ऐसे आते हैं, जब से नए घर में शिफ्ट हुए हैं, मुंतकिल हुए हैं, हमें किसी की नजर खा गई है। अरे नजर लगती है मैं मानता हूँ, नजर हक है मैं मानता हूँ, कुछ हमारी जिंदगी कुछ हमारा निजाम भी ऐसा है कि वो अंदर सारा का सारा वीरान हो गया। हम हुए ही कब्रिस्तान में शिफ्ट थे। आपने एक चीज नहीं सुनी होगी कि जी बास लोगों के साथ बरकत है, बस क्या हुआ फलां बंदा जो गया ना उनकी सारी बिसात लिपट गई, हालात में आ गए। उस बंदे के साथ जिक्र था, उस बंदे के साथ तस्बीहात सजदे अल्लाह जल्ल शानहु का नाम था, वो रिस्क के जरिया, वो राहतों का जरिया, वो जिन्नात और शयातीन को निकालने और उनको कब्रिस्तान न बनाने के ये जरिए थे। हमारे एक दोस्त हैं, करीबी दोस्त हैं, वो ऐसे सूखे पतले से बिल्कुल, जैसे कोई कहने वाला ने कहा कि ना मुंह में दांत ना पेट में आंत, बिल्कुल ऐसे कमजोर से, 70 साल के ऊपर के हैं और बड़े चुस्त हैं, बड़े फुर्तीले हैं, क्योंकि वो जो बेचारा पेट के रोग को लेके चलेगा चुस्त तो नहीं हो सकता। साइंस की रिसर्च है कि अक्सर हंगामों में और धमाकों में या हादसों में मोटे लोग कम मरते हैं, पतले ज्यादा मरते हैं। मोटा पहले से दूर होता है, भाई मैं कैसे भाग सकूंगा, वो खुद बहुत पहले से हटता है, ये रिसर्च मैंने पढ़ी। तो बिल्कुल पतले सूखे से हैं, तो उनकी वालदा के पास जिन्नात पढ़ते थे, वो दम भी करती थी, मैंने भी देखा हुआ था। मेरी नानी अम्मा की वो बहन बनी हुई थी, बूढ़ी थी, बड़ी अल्लाह वाली दुर्वेश, सारा जिंदगी कुरान सफेद पोशी थी, बस वही पढ़ाया, तो वो दम भी करती थी और जिन्नात उनके पास बच्चे पढ़ते थे और जिन्नात के बच्चों को सबसे ज्यादा मारती थी। कहने लगी, और मैं खुद एक दफा गया तो एक बच्चे को मार रही थी खबीस और गालियां दे रही थी, वो गालियां यही देती थी, खबीस कुत्ता वला वला फला ऐसी, दूसरी गालियां नहीं देती। अच्छा देर से आता है फिर भाग जाता है, सबक याद नहीं करता, इतना मार रही थी कि शायद बच्चा मर जाता। मैंने आके नानी अम्मा से अर्ज किया, नानी अम्मा ने कि मैंने कहा नानी अम्मा वो ऐसे बच्चे को मार रही थी। हाँ नहीं, कह लगे ना गया कोई जिन हो सी, कोई जिन का बच्चा होगा, उसी को मारती है ज्यादा, वो मार ज्यादा खाते हैं। और वाकई उनके पास जिन पढ़ते थे। तो कहने लगे कि एक दफा ना अम्मा ने मुझे कहा बेटा जाके ना किसी दरख्त की ताजा शाख तोड़ के ले आ, कोई खजूर की छड़ी, किसी दरख्त की ताजा शाख वो तोड़ के ले आ। मैं तोड़ के ले आया। आपने देखा होगा घरों में ऊपर सीढ़ियां होती हैं ना, सीढ़ियों के ऊपर एक छोटा सा कमरा बमटी बनी होती है जो सहन में खुलता है, छत पे जाके खुलता है। उस कमरे के ऊपर गई और वहां जाके ना मारना शुरू कर दिया। तुम्हें मेरा घर ही मिला था रहने के लिए। अच्छा तुम्हें ये किसने कहा कि इस घर में आके रहो? और थोड़ी देर के बाद हमने देखा अम्मा दीवारों को मार रही, नीचे मार रही, क्या कर रही? वो तो थोड़ी देर के बाद चीखों की आवाजें, रोने की आवाजें और माफियों की आवाजें आना शुरू हो गई। और अम्मा फिर हांफती कांपती नीचे आई, गिर गई, पानी पिलाया, थकी बूढ़ी बेचारी, और कहने लगी एक खानदान था, सारे बच्चे बिस्तर उठाए, उन्होंने कहा ये जगह बहुत अच्छी है, यहां ना रहे, तुम्हें मेरा घर मिला था रहने के लिए, तुम्हें मेरा ही घर मिला था, इसका मतलब है मेरे घर में रहोगे, तेरे बच्चे मेरे बच्चों को छेड़ेंगे और फिर मेरे घरों में बीमारियां दुख आएंगे और मेरे बच्चे गुनाहों की तरफ, अय्याशियों की तरफ और अल्लाह की नाफरमानी की तरफ मुबतला होंगे। अच्छा, यही मेरा घर मिला था, मैंने बेटा उनको निकाल के आई हूं, वो बस अब यहां से चले गए, माफी मांग के आए हैं। कहने लगे अम्मा जब तक जिंदा रही मेरे घर में, हमारे घर में बीमारियां, झगड़े, मुसीबतें, मुश्किलात, मसाइल, हम मालदार शुरू से नहीं थे, अब भी नहीं है, अम्मा के होते हुए कभी कोई जरूरत की कमी नहीं आई, कभी कोई दुख तकलीफ नहीं आया और कभी परेशानी नहीं हुई, हर सुख मिला, हर सुकून मिला, हर चैन मिला, हर राहत मिली। अम्मा जो थी और अम्मा के साथ दो चीजें थी, एक सजदे थे, एक कुरान था, एक सजदे थे, एक कुरान था। और सूरत बकरा तो अजब सूरत है। हमारी एक रिश्तेदार खातून है, उसकी बहुत सारी बेटी हैं, अब आखिरी बेटी की शादी अभी की है, दो साल पहले वाले बन, डेढ़ साल पहले। तो मैं एक दफा गया तो मुझसे कोई वजीफा पूछने लगे, मुझसे कहने लगी मैं वजीफा पूछ रही हूं करूंगी, पर मेरे पास तो एक ऐसा वजीफा है आज तक कभी खता नहीं गया। तो मैंने पूछा कि कौन सा वजीफा? तो मुझसे कहने लगी कि हकीम साहब मैं तो ना जब भी मेरी बेटी को देखती हूं ना कि सर उठा रही है, यानी बाले हो गई है जवानी की दहलीज पे, बस मैं सूरत बकरा रोजाना पढ़ना शुरू कर देती हूँ, एक दफा रोजाना पढ़ती हूँ और पढ़ती रहती हूँ, मैं बिल्कुल सफेद पेश हूं कि आप मुझे जानते हैं। अल्लाह उसके रिश्ते का इंतजाम भी कर देते हैं, अल्लाह उसके लिए दामाद और जहेज और जरूरियात और मेहमानों के खाने रहने सारी जरूरतें पूरी कर देती हैं। मुझ तो सूरत बकरा का ऐसा यकीन है जिसकी हद नहीं। कहने लगे एक बस मुझसे गलती हुई, एक दामाद ऐसा मिला कि मैं अचानक आया और मेरी माँ फौत हो गई है, उन्होंने कहा हाँ जल्दी जल्दी कर दे, अच्छे लोग हैं, और मैंने कर दिया, बस वही दामाद है जो मेरा सर दर्द का जरिया है, बाकी सूरत बकरा वाले दामाद हैं, मुझे तंग नहीं करते। एक सियाने ने कहा था कि दामाद और बहनोई सारी उम्र ब्लैकमेल करते हैं, कोई किस्मत वाले, सारे नहीं होते, सारे नहीं होते, अल्लाह के बड़े बड़े अच्छे बंदे, अच्छे घराने, अच्छे दामाद होते हैं। और मैं एक घर की बर्बादी का पैकेज भी दिया करता हूं, जो चाहता है मेरा घर बर्बाद हो, मैं वीरान हो जाऊं, दौलत रिस्क मुझसे छिन जाए, सुख सुकून मुझसे दूर हो जाए, राहत कूच कर जाए, आराम जिंदगी से चला जाए, इज्जतें मुझे करीब ना आए और हर वक्त बीमारी घर में हो, हर वक्त बेसुकूनी हो, हर वक्त बेचैनी हो और हर शख्स मेरा दुश्मन बन जाए, एक बीमारी से निकलूं दूसरी, एक दुख से निकलूं दूसरा, एक परेशानी खत्म ना हो दूसरा। आप चाहते हैं ऐसा हो जी? अगर कोई चाहता है ऐसा हो, फिर अपनी बीवी को गालियां दे, उसके माँ बाप को बुरा भला कहे, उनकी इन बेइज्जती करे और उसे माँ बाप से दूर करे और माँ बाप से नफरत हो और माँ बाप के बहन भाइयों से नफरत हो, वो उनको गालियां दे तो तसल्ली करें, ये सब चीजें उसके घर में बड़ी आसानी से आ जाएंगे। रब्बना ला तुआखिज़ना मिन सुए आमालेना वला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमना, अल्लाह मेरे गुनाहों की वजह से मेरे मुझे पकड़ न दे और मेरे ऊपर कोई पकड़ न भेज, मुसीबत परेशानी आजमाइश इब्तिला, वला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमना, اے اللہ میرے اوپر کوئی ایسا ظالم مسلط نہ کر جس کے دل میں رحم کا ذرہ بھی نہ ہو. ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میرا باس ایسا ہے کیا کروں, اگر بچوں کا ساتھ نہ ہوتا تو یا مر جاتا یا نوکری چھوڑ دیتا, اور وہ اتنا مجھے ذلیل کرتا ہے, اتنا رسوا کرتا ہے, اتنا پریشان کرتا ہے. اچانک میرے دل میں بات آئی, نہ مجھے کوئی کشف ہوتا ہے, نہ میری کوئی کرامت ہے, نہ میرے کوئی جن تابے ہیں. اچانک میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی, میں نے کہا کہیں ایسا تو نہیں آپ بیوی کو اور بیوی کے خاندان کو, اس کے یعنی آپ کے سسرال ہیں ان کو آپ رسوا کرتے ہوں, برا بلا کہتے ہوں. کہنے لگے نہیں میں نہیں کرتا, کبھی غصہ آ جائے تو کر لیتا ہوں. میں نے کہا خوشی میں تو کوئی بھی نہیں کرتا. کہنے لگا میں بالکل نہیں کرتا. ہاں پھر آپ کو پتا تو ہے نا, پھر غصے میں پھر مجھے قابو نہیں رہتا. ان کا غصہ بھی موقع دیکھ کے آتا ہے, ہر موقع پہ غصہ نہیں آتا. بعض غصے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی اور ایم اے کیا ہوا ہوتا ہے, بڑے پڑھے لکھے غصہ ہوتا ہے, سلجھا ہوا ڈیسنٹ وہ غصہ ہوتا ہے, اور وہ موقع دیکھ کے آتا ہے, ہر موقع پہ نہیں آتا. تو اکل آپ کو پتا تو ہے پھر غصے میں بندے کا قابو نہیں رہتا. پھر میں احتیاطاً بیوی کو اور اس کے ماں باپ کو ایک ایک من سوا سوا من کی گالی دے دیتا ہوں, برا بلا کہہ دیتا ہوں, ان کو توہین کر دیتا ہوں, باقی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. پھر اللہ اس پہ کوئی مسلط کر دیتا ہے, مسلط کر دیتا ہے. تو کہنے لگے جب تک میری اماں زندہ تھی ہمارے گھر میں کچھ نہیں تھا, ادھر اماں گئی اور گھر کے اندر مصیبتیں, ہائے ایک شجر سایہ دار میرے گھر سے اٹھ گیا, سارے جہاں کی دھوپ میرے گھر میں آ گئی, سارے جہاں کی دھوپ میرے گھر میں آ گئی. وہ سورت بکرا تھا, سورت بکرا اس کو پکڑ کے بیٹھے. وہ سورت بکرا جو ہے وہ مسلسل سورت بکرا اور قرآن اور سجدے, قرآن اور سجدے. اس کو نیچے رکھ دیں, آپ کو ہی پریشان کرتا رہے گا. قرآن اور سجدے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ جی بس تسبیح خانے کی برکت سے, آپ کی دعاؤں کی برکت سے اب تو دنیا دولت چیزوں سے نفرت, اور میں نے فیصلہ کیا ہے بیٹوں کے رشتے بالکل سادگی میں کوئی جہیز کا مطالبہ نہیں کروں گا. یہ بہت بڑی لانت ہے, اور ایک بندہ بیٹی بھی دے اور سہج جہیز کا مطالبہ کروں. ابھی پچھلے دنوں اور ایک بیٹے کا رشتہ آیا, میں نے کہا بھائی میں کچھ بھی نہیں مانگوں گا, کچھ بھی نہیں, بس ایسا کوئی بچی کا رشتہ ہو جائے, لاہور ڈیفنس میں ان کا بڑا سارا گھر ہو, ایک گاڑی دے دیں اور کچھ مناسب سا جہیز, کچھ ڈائمنڈ کے سونے کے سیٹ. بالکل میں نے ان چیزوں سے اب تو نفرت ہی ہو گئی ہے, میرا جی چاہے کہ میں اس کو اٹھا کے ماروں. کیا نیا دیمار کو بھی گٹی لگی, اس کو کہوں کیا, یہ کیا کرتا ہے. آپ کی دعاؤں سے, اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ کی دعاؤں سے. بس میں نے کہا کچھ بھی نہیں لینا, کوئی مطالبے نہیں. گھر ویران ہو گئے, قبرستان بن گئے, قرآن کی سسکیاں, قرآن کی آہیں, قرآن کی فریادیں. پھر کہتے ہیں کوئی جادو کیا کسی نے, اور وہ کراچی کی گلی گلی اور لاہور کی گلی گلی اور ملک کی پاکستان کی اور بر صغیر, میرے پاس انڈیا سے لوگ آتے ہیں وہ بھی باتیں بتاتے ہیں, میرے پاس بنگلہ دیش سارا بر صغیر جادو اور جادو گھروں سے بھرا ہوا ہے, یہی کچھ آتے ہیں. روگ اندر کا ہوتا ہے, کیل لگا ہے سڑک پہ جاتے ہوئے, ٹکے کا کیل تھا, کروڑ روپے کی گاڑی سڑک پہ کھڑی ہے, کہنے لگا میری گاڑی میں جادو ہو گیا. وہ ہمارا ایک ساتھی ہے, وہ سپیکر وغیرہ کا کام کرتا ہے. اب تو پہلے وہ ڈش وغیرہ یہ وہ چلتے تھے, ایک ڈش ہوتا تھا ایک پہلے اتنا سا ہوتا تھا, اسے کیا کہتے تھے پتہ نہیں, جس پہ وہ فلم چلاتے تھے پتہ نہیں, وی سی آر, ہاں 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 وی سی آر. تو وہ کہنے لگے ایک جگہ ایک گاؤں میں گیا, وہ کرائے پہ بیٹری لے گئے, وہاں کوئی گوٹ کوئی گاؤں تھا, وہ کوئی لائٹ وغیرہ تو تھی نہیں, کہنے لگے لے گئے اور انہوں نے ہر چیز رکھا, اور کہنے لگے سگنل نہیں آ رہے, آگے آگے لکیریں سی آ رہی. मुझे ले गए। मैंने इसे खड़े होकर कहा, मैंने कहा ये दीवार आगे ये झाड़ियां ये काट दो सारी, ये रुकावट बन रही है। नौजवान थे कोई को, एक पल में उन्होंने सब खत्म कर दी। फिर देखा, मैंने कहा नहीं, ये दीवार है ये तोड़ दो सारी। उन्होंने दीवार तोड़ दी सारी। फिल्म जो देखनी थी, रात बड़ी खुशगवार गुजारनी थी। नैनों का तेरे काजल दिल पर असर करे है, क्या बात है असर की जेरो जबर करे है। एक रोज तमाशा खातिर आया था यार मेरा, उस दिन से हाय हाय सारा नगर करे है। मैंने ये दीवार तोड़ दो, उन्होंने दीवार तोड़ दी। अब उन्होंने कहा हाँ अब कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ लकीरें हैं। ये जो सामने दरख्त खड़ा ना सारा काट दो, उन्होंने वो भी काट दिया। उसके बाद भी लकीरें खत्म नहीं। मैंने कहा तुम्हारे VCR पे जादू हो गया, किसी ने तावीज कर दी है। एक बाबा है मेरे पास, उसके पास जाऊंगा तावीज। उन्होंने कहा हाँ तावीज कर दिया। देखो ना वो फलां बंदा था ना हमारा बाबा, वो कहता था गांव में ये चीज ना लाओ, उसी ने तावीज किया है। हमारे तो पाकिस्तान में VCR पे भी तावीज होते हैं। अपने गिरेबान में झांकना, अपने घर में झांकना, अपनी जिंदगी की तर्ज को देखना यह मुश्किल काम है। इल्जाम लगा देना मेरे मुल्क के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, बड़ा आसान काम है। अपनी इस्लाह करना दुनिया का बड़ा मुश्किल काम है। अपने आप को कहना बुरा दुनिया का सबसे बड़ा नाजुक मामला है। हर नबी की यह तरतीब रही, नबी गलत नहीं होता, नबी गुनाहगार नहीं होता, नबी बदकार नहीं होता, नबी मासूम 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 होता है। हर नबी कहता है जलम तो नफसी फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। हर नबी कहता है ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। नबी अलैहिस्सलाम खुद फरमा रहे हैं ताइफ के मौके पे, मौला ये मुझे जानते नहीं, मैं इन तक अपनी बात नहीं पहुंचा सका, तो इन पे अजाब न भेज। अगर इनके हक में हिदायत नहीं लिखी तो इनकी नस्लों को हिदायत दे दे। अपना कसूर बयान कर रहे, अरे मेरे मोहम्मद का कसूर तो हो ही नहीं सकता, मेरा मोहम्मद सारे कहो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कायनात के कामयाब जर्नेल, कायनात के कामयाब लीडर, कायनात के कामयाब रहबर, कायनात के कामयाब अमीर, कायनात के कामयाब उस्ताद और कायनात के कामयाब पीरो मुर्शिद थे। वो दानाए सबुल खत्म रसूल मौलाए कुल के, जिसने गुबार राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना। देखी नहीं अगर किसी ने शान मुस्तफा, देखे कि जिब्राइल है दरबान मुस्तफा। इस्लाम का जमाने में सिक्का बिठा दिया, अपनी मिसाल आप हैं यारान मुस्तफा। मेरे हजार दिल हों तसद्दुक हजूर पर, मेरी हजार जान कुर्बान मुस्तफा। रिश्ता मेरा खुदा की खुदाई से टूट जाए, छूटे मगर न हाथ से दामान मुस्तफा। लाए न क्यों ये नगमा मलाइक को वजद में, गाता है जिसको बुलबुले बुस्तान मुस्तफा। मेरा घर कब्रिस्तान क्यों बना, रोग कहां से शुरू हुआ? उसने जादू कर दिया, उसने मैं जादू को मानता हूं उसका इलाज भी देता हूं, मैं जिन्नात को मानता हूं उसका इलाज भी देता हूं, मैं नजरबद को मानता हूं उसका इलाज भी देता हूं। कोई हर चीज जादू नहीं होता, कोई हर चीज नजरबद नहीं होती, कोई हर चीज जिंदगी के इन्हीं चीजों के साथ नहीं, कुछ और भी होता है इस जमाने में, कुछ और भी होता है। मेरे आका ने फरमा दिया जिस घर में कुरान सूरत बकरा नहीं उस घर में कब्रिस्तान है वो घर, और जिस घर में सजदे नहीं वो घर कब्रिस्तान है। और मैंने वो खातून की बात नहीं बताई जिस बेटी को देखती हूं सर उठाती है, बस मैं रोजाना सूरत बकरा पढ़ के अल्लाह से मांगना शुरू कर देती हूं और मेरा अल्लाह गैब से इंतजाम कर देता है, और गैब से, और अल्लाह ने गैब से मेरा निजाम बना दिया। हमारे मसाइल का हल, हमारी मुश्किलात का हल, हमारी जिंदगी के रोगों का हल, हमारे दुखों और मसाइल का हल सदियों 1400 1450 साल पहले आ चुका है। साइंस जितनी तरक्की करती जाएगी करती जाए, इजादात होती जाएंगी होते जाएं, پر رب کعبہ کی قسم زندگی کے اللہ کے نام اور مدینے والے کے فرمان کے علاوہ کوئی راہیں نہیں، کوئی منزلیں نہیں، کوئی راستے نہیں، کوئی زندگی کا انداز نہیں، وہ زندگی کا راستہ یہی ہے اور وہ زندگی کی منزل یہی ہے۔ جتنے ادھر ادھر بھاگنے ہیں بھاگ لیں، تھک ہار کے آئیں گے، تو راستہ تو یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی منزل نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ اگر اپنے گھروں کو قبرستانی گھر نہیں بنانا چاہتے، ویران گھر نہیں بنانا چاہتے اور گلستان بنانا چاہتے ہیں، چمنستان بنانا چاہتے ہیں، تو پھر گھر کے اندر دو چیزوں کو رواج دیں گے آج کے بعد۔ کون سی دو چیزیں ہیں جی؟ ایک نماز، ایک نماز۔ آج میں ایک نماز بتاتا ہوں۔ کوئی بھی مشکل ہو، پریشانی ہو اور آپ کہتے ہیں موت اس کا حل ہے، ایک نماز بتاتا ہوں، اس نماز کو زندگی کا ساتھی بنا لیں۔ بتاؤں بتاؤں؟ وہ صلاۃ و تسبیح ہے۔ آج تک صلاۃ و تسبیح کو ثواب کی نیت سے پڑھا، اب علاج کی نیت سے پڑھیں۔ صلاۃ و تسبیح، صلاۃ و تسبیح۔ مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آئی، جو نماز تیری دنیا میں دو روٹی کا حل نہیں ہو سکتی، اس نماز پہ جنت اتنی بڑی ملنے کا یقین تو نے کیسے کر لیا؟ کیا بات ہے، ایک عظیم انسان کی۔ جس نماز سے تجھے مرنے سے بعد اتنی بڑی جنت کے ملنے کا یقین نہیں ہے، اس نماز میں تجھے کیسے یقین ہو گیا؟ کیسے یقین؟ اور دو روٹی ملنے کا یقین نہیں ہے، اتنی بڑی جنت کا یقین کیسے ہو گیا؟ اسی طرح صلاۃ و تسبیح سے کائنات ملی ہے اور ملے گی۔ اللہ کے حبیب نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کیا کہ آپ زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیں، ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیں، مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیں اور سال میں ایک دفعہ پڑھ لیں، پڑھ لیں۔ بالکل آسان کام۔ آپ میں سے کون ایسا نہیں ہوگا جس کو تیسرا کلمہ نہیں آتا ہوگا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، کون نہیں ہے؟ اگر زیر زبر کی غلطی ہے، کچھ کمی بیشی الفاظ کی، یاد کر لیں، یہی صلاۃ و تسبیح اور کیا ہے؟ رکوع میں پڑھنا ہے، قیام میں پڑھنا ہے، سجدے میں پڑھنا ہے، ایک رکعت میں 75 دفعہ پوری کر لیں، دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت، 10 منٹ لگتے ہیں صلاۃ و تسبیح پڑھنے میں، اگر آپ کے مسائل سارے حل ہو جائیں، گھر قبرستان سے نکل کے چمنستان اور گلستان بن جائے، گھر بیماریوں سے نکل کے شفا یابی کا ذریعہ بن جائے، گھر میں جھگڑے ختم ہو، صحت مندی آ جائے، گھر میں غربت ختم ہو، تونگری آ جائے، گھر کے اندر نفرتیں ختم ہوں اور محبتوں کی فضائیں پھیل جائیں، اور گھر سے قرضے ختم ہوں، اللہ اتنا دے کہ مخلوق کو دے، بیٹے ملیں، عزتیں ملیں، صحتیں ملیں، خوشیاں ملیں، تونگریاں ملیں۔ رب کعبہ کی قسم، صلاۃ و تسبیح کنجی ہے راحتوں کی، برکتوں کی، خیروں کی، عزتوں کی، رانائیوں کی، شادمانیوں کی۔ صلاۃ و تسبیح، آ صلاۃ و تسبیح۔ میں نے صلاۃ و تسبیح بڑی تحقیق کی ہے، بہت کتابیں چھانی ہیں صلاۃ و تسبیح پہ، صلاۃ و تسبیح پہ۔ اچھا، صلاۃ و تسبیح مجھے چونکایا ایک ہستی نے مجھے چونکایا۔ اصل میں میرا شعبہ یہی ہے، ڈپارٹمنٹ یہی ہے نا، تو میں سارا دن اپنے ڈپارٹمنٹ کو سوچتا ہوں۔ اچھا، یہ آپ نے یہ حدیث مبارکہ ضرور پڑھی ہوگی، یہ غالباً فضائل اعمال میں دوران تعلیم بھی سنی ہوگی، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ لیکن جس حدیث کو میں نے جس انداز سے بیان کیا ہے، یہ کبھی سوچا تھا کہ گھر قبرستان بنیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ وہاں جنات ہوں گے، وہاں شیاطین ہوں گے، وہاں باطل ہوگا، وہاں فتنے ہوں گے، وہاں زندگی کی ناکامیاں ہوں گی، وہاں مسائل اور پریشانی ہوں گی. آپ ذرا صلوات و تسبیح کو اس تصور میں لے آئیں. مجھے اس میں سب سے پہلے جس ہستی نے چونکایا، اور میں نے ایک ان کا پڑھ رہا تھا کتاب میں ان کا تذکرہ، ان کی مجالس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت کی مجلس میں سنا کہ ایک بندہ آیا اور اس نے کہا جی کہ میرے اوپر قرضوں کا بہت بوجھ ہے. تو حضرت نے فرمایا کوشش کر روزانہ خشوع خضوع سے، یہ لفظ ساتھ فرمائے، خشوع خضوع سے صلاۃ و تسبیح پڑھا کر. حضرت نے فرمایا. اچھا میں یہ پڑھ رہا تھا، چونکہ میرا شعبہ ہے نا، ایک ہے فضائل اعمال، ایک ہے فوائد اعمال، میرا شعبہ فضائل اعمال بھی ہے فوائد اعمال بھی ہے، اعمال کے فائدے جس سے دنیا کے کام بنے، جس سے آخرت کے کام بنے، جس سے دنیا کی ضرورتیں پوری ہوں، جس سے آخرت کی ضرورتیں پوری ہوں، جس سے دنیا کی الجھنیں ختم ہوں، جس سے آخرت کی الجھنیں ختم ہوں، یہ فوائد اعمال ہیں. اور یہ سارے احادیث میں اس لیے ہیں کہ مخلوق سے نظر ہٹ کے خالق پہ جائے، اور خالق سے پانے اور ملنے کا یقین بن جائے، اور خالق سے اپنی ضرورتیں پیش کرے. جب خالق سے اپنی ضرورتیں پیش کرے گا، خالق دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا. اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں، ہمیشہ یاد رکھیے گا، غور سے میری طرف دیکھیے اور سنیے توجہ سے، جو مخلوق کی جیب سے نکلا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا، جو خالق کے خزانوں سے ملا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا، وہ تیری جیب سے نہیں جا سکتا. پھر وہ نسلوں میں رزق بھی چلتا ہے، جائیدادیں بھی چلتی ہیں، زندگیوں کی برکتیں بھی چلتی ہیں، نسل در نسل در نسل وہ چلتی ہیں. ورنہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، بڑا بنگلہ بنایا، بڑی کوٹھی بنائی، بڑی فیکٹری بنائی، پہلی یا دوسری نسل میں ٹکڑے ٹکڑے حصوں کے نام پہ ہو گیا ہے. حصوں کے نام پہ، تقسیم کے نام پہ، میراث کے نام پہ. صلاۃ و تسبیح کا میں آج کرشمہ بتاتا ہوں. میں آپ کو آج ایک ڈرنک بھی دوں گا، ایک بہترین آج ایک مشروب بھی بتاؤں گا، جو کراچی کی ہواؤں اور فضاؤں میں آپ کا یہ ایک آج میں دیسی گٹکا بتاؤں گا، دیسی گٹکا بتاؤں گا میں آپ کو بہترین چیز بتاؤں گا. اور آپ کہیں گے، اور اس پہ پتہ ہے پیسے کتنے لگیں گے؟ ایک روپیہ، ایک سے زیادہ نہیں لگے گا، میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن پھر بھی میں نے ایک روپے سے تین آنے پانچ آنے بچ جائیں گے، سولہ آنے پورے نہیں لگیں گے. سولہ آنے کا روپیہ ہوتا ہے، سولہ آنے کا روپیہ، سو پیسے کا ایک روپیہ لگے گا. وہ ڈرنک بتاتا ہوں آپ کو. اب پہلے ڈرنک بتا دوں یا صلاۃ و تسبیح بتا دوں؟ جلدی جلدی بتا دیں، پہلے ڈرنک بتا دوں، صلاۃ و تسبیح بتا دوں. اچھا ٹھیک ہے، آپ پھر درود شریف پڑھیں پھر بتا دوں. صلاۃ و تسبیح میں تیسرا کلمہ ہے، اور اللہ پاک کی ساری عظمتیں اس میں ہیں. اور میرا رب کہتا ہے مجھے مانو. دو ہستیاں کہتی ہیں مجھے مانو، ایک عورت کہتی ہے اور ایک رب کہتا ہے مجھے مانو، مجھے مانو، مجھے مانو. دیکھو یہ بچے، یہ گھر، تیرے ساتھ میں نے زندگی کیسے گزاری ہے بچوں، تمہیں پتہ نہیں ہے. اور دوپٹے سے آنسو، آج کل ٹیشو نے بڑی ہمارا کام آسان کر دیا. اور تمہارے تیرے باپ کے ساتھ زندگی میں نے کیسے گزاری ہے. ایک گھر تھا تو اس میں ساری رات کہکوں کی آواز آتی تھی، لوگ حیران، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. تحقیق کی پتہ چلا مائی جو ہے وہ اپنی جوتی سے شوہر کو نشانہ لگا کے جوتی مارتی ہے، لگ جائے تو عورت کا کہکا، نہ لگے تو مرد کا کہکا. ساری رات گھر میں کہکے ہوتے تھے. اب بتاؤ جس گھر میں ساری رات ہی کہکے ہوں کتنا خوشحال گھرانا ہوگا. ساری رات گھر میں کہکوں کی آوازیں آتی تھی. एक घर ऐसा हुआ कि उस घर में कोई फंक्शन था, अचानक एक देव आ गया, घरों मच गया, बहुत शोर शराबा चीखे। खैर एक अल्लाह वाले को बुलाया, उन्होंने आते ही कहा कि फौरन सब वजू करो, वजू करने से, वजू मोमिन का हथियार है, वजू करने से हिफाजत रहती है। जब औरतें वजू करके आईं और उनका मेकअप उतरा तो फिर देव की चीखें थी, देव की चीखें थी, निकालो मुझे यहां से। सलात और तस्बीह, सलात और तस्बीह। इसमें तीसरा कलमे है, अल्लाह जल्ल शानहू की अजमत है, सुभान अल्लाह। कभी कभी अल्लाह के नाम को अल्लाह के ध्यान से भी पढ़ के उसके मजे लिया करें। एक तस्बीह तीसरे कलमे की, एक दरूद शरीफ की, एक इस्तिगफार की, कमाल है, बहुत कमाल है, बहुत तासीर है। आइंदा के लिए मिंबर उधर बनाया करें, मजमे का पीठ उधर हो, मुझे उधर बनाया करें। आने जाने वालों पे मजमे की नजर पड़ती है, उनकी नजर तवज्जो हटती है। मिंबर उधर हो, मजमे की इधर पीठ हो, इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। एक दरवेश थे, उनको अल्लाह के नाम का मजा मिला था, अल्लाह के नाम का जायका मिला था। फरमाते थे मुझे दूध फीका दे दो, मैंने अल्लाह का नाम लेना है, मेरा मुंह मीठा हो जाना है, हर घोंट मीठा हो जाना। कभी अल्लाह के नाम को अल्लाह के ध्यान के साथ करके देखें तो सही। जिक्र दुनिया करके देखा, जिक्र मौला करके देख, जिक्र दुनिया करके देखा, जिक्र मौला करके देख। कांपता है दिल तेरा, अंदेशा ये तूफान से क्या, ना खुदा तू बहर तू, कश्ती भी तू साहिल भी तू, वाए नाकामी तू मोहताज साकी हो गया, मैं भी तू मीना भी तू साकी भी तू महफिल भी तू। अल्लाह का नाम लेके दे तो सही, पर अल्लाह के ध्यान के साथ। किसके ध्यान के साथ? अल्लाह के ध्यान के साथ। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अभी वल्लाहु अकबर, अब कहना ऐसे अंदर रुआ रुआ टूट जाता है, अंग अंग में सुकून आ जाता है, और ऐसे महसूस होता है कि मेरे अंदर की एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, उलझने, तनाव, दबाव, खिंचाव, ये जिस्म का सारा बंधन टूट जाता है, और मेरा जिस्म जंजीरों, जादू की जंजीरें, दुश्मन की जंजीरें, उलझन की जंजीरें और कर्जों की और परेशानियों की, क्या होगा कैसे होगा, इन जंजीरों से आजाद होके मेरा दिल फूलों में लौट पोट रहा और जिंदगी सुखों में सुकून में आ रही। वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयल अजीम। ये जिंदगी का एक सांस है, सुख का एक रास्ता है, यकीन की एक मंजिल है और जिंदगी एक तरतीब है। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हो, मेरे कमली वाले के महबूब तरीन चचा, उनको हुजूर ने ये हदिया किया, ये तोहफा दिया, ये गिफ्ट किया और जिंदगी के दुख चुन लिए, कांटों से फूल बिखेर दिए और गढ़ों से राहें बन गईं और जिंदगी की शहराएं बन गईं। मैंने जिसको जिंदगी की कोई मंजिल मकसद हो, बेटे नहीं मिलते, बेटी है तो दामाद नहीं मिलता, बेटा है तो बहू नहीं मिलती, शोहर है तो बीवी अपना बीवी नहीं मिलती, यानी आपस में मोहब्बतें नहीं, नफरतें हैं, घर में सुकून नहीं, चैन नहीं, कर्जे हैं, मसाइल हैं। मैंने कहा रोजाना सारा घर सलात और तस्बीह पढ़े और यकीन की दुनिया के साथ गिड़गिड़ा के पढ़े, कोई वक्त मुकर्रर कर ले, कोई लम्हा जो आपकी सहूलत का हो, कोई घड़ी जो आपके लिए आसानी की हो, कोई पल जो जिंदगी में राहतों का सामान, आप फैसला कर लें कि मैंने सलात और तस्बीह पढ़नी है। ओह अजीब चीज है, अजीब चीज है। बहुत बाकमाल चीज है सलात और तस्बी। मेरे पास साउथ अफ्रीका से एक साहब आए, साउथ अफ्रीका से, वहां साउथ अफ्रीका में अल्लाह वाले हैं, वो बहुत बड़े आलिम हैं, मुफ्ती हैं, शेखुल हदीस हैं, एक बड़ा मशहूर जामिया है, मदरसा है, उस मदरसे के वो मोहतमिम हैं। साउथ अफ्रीका से मेरे पास तशरीफ लाए तो मुझसे फरमाने लगे, उनका ताल्लुक इंडिया गुजरात सूरत से है, सूरत से, तो मुझसे फरमाने लगे कि मैं जब छोटा सा ही था तो वहां गया, हमारे घर में हालात और परेशानियां थी, मसाइल और मुश्किलात, रब ने अपने घर में गुर्बत ही गुर्बत देखी, तंगदस्ती ही तंगदस्ती देखी, और मुश्किलात ही मुश्किलात, मसाइल ही मसाइल देखे। अपनी बूढ़ी मां को देखता था कि मेरी बूढ़ी मां सारा दिन जो है काम करती और रात को मुसल्ले पे लंबी रकतें पढ़ती और फिर तस्बीह पढ़ते करते थो जाती थी। मेरी शऊर की जब आंख खोली पता चला अम्मा सलात और तस्बीह गुज़िश्ता 19 साल से पढ़ रही है, और कहा कि मैंने जब मैं 12 साल का हुआ तो 12 साल में मैंने महसूस किया कि हमारे घर में खुशहाली आ रही और हमारे घर में मसाइल हल हो रहे, तो मैं जब बड़ा हुआ तो फिर अम्मा की बातें मेरे कानों में पड़ी। अब अम्मा की कहानी और बेटे शेखुल हदीस की जबानी जरा मुझसे सुन लीजिए। बहुत बड़ी इस वक्त वो पूरे वर्ल्ड की हस्ती हैं जिनका तस्करा मैं कर रहा, नाम लेना मुनासिब नहीं कि किसी के घर की दास्तान है, मेरी कोशिश होती है अगर वाकया बयान कर भी दूं तो उसमें किसी का नामो निशान ना हो ताकि किसी का पर्दा रहे। कहने लगे, मेरी वालदा कहने लगे कि बेटा तुम्हारे नाना जो थे वो एक मजदूर थे और एक खुश्क नहीं, एक खुश्क चमड़ा होता है, एक ताजा चमड़ा, उस चमड़े की फैक्ट्री में काम करते थे देहरादून में, देहरादून सहारनपुर से आगे देहरादून, वहां काम करते थे। लगे कि थोड़ी सी मजदूरी लाते थे और घर का गुजारा होता था, और बाज़ोकत हमारी जरूरतें, ख्वाहिश तो दूर की बात है, हमारी जरूरतें भी पूरी नहीं होती थी। मुझे खत लिखा किसी ने, खत लिखा आज भी मुझे याद है, कस्टर्ड खाने को बड़ा दिल चाहता है। मुझे कराची के एक दोस्त की बात याद है, 2 रुपए के पापे लाता हूं और बहुत सारे बच्चे हैं और उनको सुबह खिलाता हूं, एक कमरे में किराए का घर है और मैं टेढ़ा सोता हूं, मेरी कमर में दर्द रहने लगा है, घर में सुबह की नहीं होती शाम की, बच्चों के कपड़े लिबास नहीं होते, गुर्बत और तंगदस्ती है बच्चों के लिए और वीरानी है। और घर में आज उस मैंने शख्स को खुशहाल देखा, उसने मकान लिया, मुझे कहने लगा 8 कमरों का घर है। मैं घर में गया, मेरा दिल ठंडा हुआ कि रब ने उसको इसने तंगदस्ती के बाद खुशहाली अता फरमाई, आज भी उसके उस खुशहाली पे मेरा दिल ठंडा होता है। तो मुझसे कहने लगे, घर में गुर्बत थी, तंगदस्ती थी, नाना लाते थे और देते थे, फिर नाना भी फौत हो गए और हमारे घर में गुर्बत तंगदस्ती आई। एक दफा हमारे घर में एक पीरानी साहबा आती थी, किसी पीर साहब की बीवी अहलिया थी बूढ़ी, कहने लगी बेटी सलात तो तस्बीह पढ़, तेरे दिन फिरेंगे, जल्दी ना करना, एक वक्त आएगा तेरे घर में अल्लाह दौलत इतनी देगा, रख रख के भूलेगी, रख रख के भूलेगी। और कहा कि मेरी वालदा ने सलात तो तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी। कहने लगे कि आज हमारे घर की सूरत हाल यह है कि बाज औकात एक एक पाओ सोना हम रख के भूल जाते हैं, और वो आगे है ही इतना, हमें याद नहीं रहता कि वो था माल और अक्सर अमेरिकन डॉलर के बंडल के बंडल, हम रख के भूल जाते हैं, और बाज़ औकात ब्रीफ केस के पीछे से निकलते हैं, बाज़ औकात कहीं मिट्टी धूल में अटे हुए निकलते हैं, हमने कहा पता नहीं कहां से गिर गया था, कैसे रह गया था। और मेरी वालदा फौत हो गई है, اور میری والدہ نے مرنے سے پہلے مجھے کہا تھا، بیٹا دیکھ میں نے تجھے عالم حافظ قاری بنایا ہے، ساری مصروفیتیں تیری ایک طرف ان کو، پر صلاۃ و تسبیح بیٹا کبھی نہ چھوڑنا، تیری زندگی میں صلاۃ و تسبیح سے ہمیشہ رزق عزت برکت ملتی رہے گی۔ کہا کہ میرا اتنا بڑا اخراجات کا نظام ہے، آج تک میں نے کسی سے سوال نہیں کیا، آج تک میں نے کسی کو خط فون میسج نہیں کیا، اللہ غیب سے میرا نظام عزت وقار اور آبرو کے ساتھ چلا رہا۔ اور کہا کہ میں اگر لسٹ بناؤں تو کوئی میں 40-50 ہزار بندوں کو صلاۃ و تسبیح پہ لگا چکا ہوں۔ وہ بہت بڑے شیخ الحدیث مجھے کہنے لگے، اور حالانکہ کسی کا قرضہ تھا تو وہ اترا، مرض تھی وہ ختم ہوئی، بیماریاں تھیں وہ ٹوٹی، جادو تھا وہ ختم ہوا، اور کسی کی اولاد بیٹے نہیں تھے وہ ملے، اور زندگی خوشیاں خوشحالیاں راحتیں ملی صلاۃ و تسبیح کی وجہ سے۔ اور کہا کہ کوئی شخص ایسے تھے جو کسی کو اپنا روگ اور عیب بتا نہیں سکتے تھے، صلاۃ و تسبیح کی وجہ سے اللہ نے ان کی راحتیں اور برکتوں کے دروازے کھولے، اور خوشیاں خوشحالیوں کی شارائیں اور ایسے ایسی رحمتیں عرشوں سے آئیں کہ گمان سے بالا تر ہے، صلاۃ و تسبیح میں کائنات ہے۔ اب صلاۃ و تسبیح واحد چیز ہے جس میں ذکر بھی ہے اور اس میں سجدے بھی ہیں، یہ ذکر اور سجدے دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تیسرا کلمہ ذکر ہے، اور بلکہ میں ایک اور بات کہا کرتا ہوں، صلاۃ و تسبیح واحد چیز ہے جس میں تین چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں، نماز، قرآن اور ذکر۔ نماز، صلاۃ و تسبیح، قرآن، اس میں سورۃ فاتحہ ملاتے ہیں، ثنا ملاتے ہیں، سورۃ فاتحہ تو ملاتے ہیں نا، سورۃ فاتحہ قرآن ہے۔ اور تیسرا کلمہ ذکر ہے، یہ ساری چیزیں صلاۃ و تسبیح میں جمع ہو جاتی ہیں۔ اور صلاۃ و تسبیح حیرت انگیز ایک انوکھا برکتوں کا نظام ہے۔ جو شخص صلاۃ و تسبیح پڑھے گا، وہ قرآن بھی پڑھے گا، وہ ذکر بھی پڑھے گا، وہ سجدے بھی، اور جو گھر قبرستان بن چکے ہیں، اور آپ کو گھر میں ہر طرف گلدستے گل پھول نظر آ رہے ہیں، قبرستان میں قبریں اور مینار اور مزار نظر نہیں آ رہے، تو وہ غیب کی خبر پہ یقین کریں۔ اور جس گھر میں بے اولادی ہے، پریشانی ہے، مشکلات ہیں، مسائل ہیں، الجھنیں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، جھگڑے ہیں، جادو کے وار ہیں، جنات کے وار ہیں، شیاطین کی شرارتیں ہیں، سمجھ لیں میرے گھر میں قبرستان بنا ہوا ہے میرا گھر، تو فوراً سورۃ بقرہ گھر میں لگائے، میموری کارڈ، MP3، کسی بھی موبائل کے ذریعے سے دن رات گھر میں سورۃ بقرہ چلائے اور سورۃ بقرہ پڑھے اور صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کرے، بلائیں وبائیں ٹلیں گی۔ اور ایک بات اور بھی وہ یہ ہے کہ اچھا کراچی والوں کا جب بھی آئے ہوں سپیکر بندہ ہی پکڑ کے بیٹھتا ہے، انتظام کرنے والے بھی کلندر ہوتے ہیں، اور لاہور والے تو کلندر ہیں، ایک ہوتا ہے کلندر ہے کہ کل اندر، لاہور والے تو کلندر ہیں، کھانے پینے کے شہنشاہ ہیں، چل جاؤ گڑیوں بارو بار آن دیو بھائی جی، گڑیوں بارو بار آن دیو۔ لاہور والے تو کلندر ہیں، کراچی والے جو سپیکر آج تک میں نے دیکھا بندہ پکڑ کے نہ بیٹھا، معذور سپیکر ہوتا ہے جس میں مجھے اپنے آپ کو جو ہے یہ کرنا چاہیے، نہ گردن ادھر ہلاؤں نہ ادھر ہلاؤں، میں سامنے بیٹھوں تو آواز آئے۔ تو میں صلاۃ تسبیح اس کے ضمناً میں ایک بات عرض کر کے اب اگلا جو ہے پیکج میں شروع کر رہا ہوں، ایک بات کر کے اگلا پیکج۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، بعض اوقات نا انسان پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ چھت تو ابھی ٹوٹی نہیں، چھت ابھی پھٹی نہیں۔ دیکھیے اللہ کی کلام تاثیر رکھتی ہے، اور تاثیر میں بعض اوقات تاخیر میں اور بعض اوقات جلدی فیصلے ہوتے ہیں، بعض اوقات جلدی اور بعض اوقات دیر میں فیصلے ہوتے ہیں۔ میرا رب جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، جو چاہتا ہے صحیح چاہتا ہے، جیسا ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے۔ ایسے صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کریں، सीखें, हर बंदे को आती है थोड़ा सा। तीसरा कलमा है, बस कयाम में कितना पढ़ना है, रुकू में कितना पढ़ना है, रुकू में उठने के बाद कितना पढ़ना है, 10 दफा पढ़ना है, 15 दफा पढ़ना है, सजदे पे कितना पढ़ना है, बस इतने कुछ पे और क्या है, बस यही कुछ तो है। वक्त कौन सा भी हो, जो मकरू वक्त नहीं है, जो वक्त हो, जो लम्हा हो, जो लहजा हो, जो घड़ी हो, सलात और तस्बीह का एहतमाम करें, आखरत का निजाम बेहतर होगा, दुनिया के मसाइल हल होंगे। मैं एक दफा एक सफर में था तो एक साहब मुझे जानने वाले थे, फौरन आए, कहने लगा आपका नाम ये है? मैं कि जी। कहने लगा मैं दुनिया में बहुत मुश्किलात है, वो मुझे अपनी मुश्किलात की लिस्ट बताने लगे। मैं कहा बस 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 समझ गया हूं, समझ गया। कहने लगे मेरी सुने तो सही। मैंने कहा चलिए सुनने से पहले तुझे मैं अपनी एक मिसाल सुना देता हूं। गांव में एक बैठा था बंदा बैठा था, उसने कहा जी फलां के झोंपड़ी छपरे को आग लग गई। गांव में ना आपके सिंध के गोठों में भी इधर उधर दीवारें देते हैं और एक ऊपर टिंकू का एक छप्पर डालते हैं, आग लग गई। एक ने पूछा कैसे लगी? उसने कहा ठहर भाई मैं बताता हूं। सियाना बैठा था, उसने कहा माई जो है उसने तंदूर जलाया, उसके तिनके बाहर निकले हुए थे, तिनका तिनके से लगा और वो आग लग गई। कह रहे हाँ ऐसे। मैंने कहा आपके तिनके के साथ तिनका मुझे समझ आ गया है, अब इसका हल सुन लीजिए। वो कहे नहीं मेरी पहले सुन, पूरी सुन हिस्ट्री, मेरे दिल की आग तो बुझे नहीं तो पू कैसे बताएगा। हमारे एक उस्ताद होते थे मोटरसाइकिल की मुरम्मत करते थे, वो कोई मोटरसाइकिल बैठे बना रहे होते थे और साथ वाला मोटरसाइकिल रुकता था और वो कहता था उस्ताद जी इसमें यो नक्श, करे चुप कर चुप कर, मैंने तेरे मोटरसाइकिल के चलने की आवाज से उसका नक्श समझ लिया है, फला 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 होता है। कह जी जी बिल्कुल ऐसे होता है। कहा आप इतना तजर्बा हो गया है कि मोटरसाइकिल अपनी आवाज भी बताता है, अपनी बीमारियां भी बताता है, अपने रगों के दुख भी बताता है। मैंने कहा तेरे मसाइल ये हैं। कहा यही है। मैंने कहा आप ऐसा करें, आप सिर्फ और सिर्फ सलात और तस्बीह का एहतमाम करें। असल में पता ही क्या है, इंसान आसानियां चाहता है। कह रहे तू कुछ तावीज दे दे, मुझे लोग कहते हैं मुझे तो तावीज, कहने लगे आपने जो खिदमत करनी हम करेंगे, आपका दिल खुश करेंगे। कोई तावीज दे दे, कोई धागा दे दे, कोई फोंक मार दे। तावीज देना भी कोई गलत नहीं, धागा देना भी गलत नहीं, अगर उसमें शिर्क और बिदत नहीं है, गैरुल्लाह नहीं है, हमारे अकाबिर हमारे असलाफ की तरतीब है। लेकिन मेरे आका की जिंदगी में सारी जिंदगी मखलूक को अमाल पे लगाना है। मेरे हजूर ने तावीज लिखे हैं, दिए हैं, साबित है अहादीस से, ये सारी रिवायात मौजूद हैं। मेरे आका की जिंदगी का सारा निजाम मखलूक को अमल पे लगाया है। मैं आपको एक आपसे एक सवाल करता हूं। बताएंगे सवाल, मुझे एक चीज बताएं, मुझे आज तक कोई एक ऐसी रिवायत बता दें, आज तक कोई एक रिवायत ऐसी कोई बंदा बता दें। इसको पकड़ के रखिएगा जरा, मैं दीवारे खस्तगी हूं मुझे हाथ मत लगा, मैं गिर पड़ूंगी तुझे आसरा समझ के। देखें फिर गिर गया, पकड़ के रखिएगा। जो स्पीकर का इंतजाम करते हैं और वो स्पीकर वालों को पैसे भी देते हैं, या तो उनके पैसे रोक लें या फिर ये तरतीब रोक लें। क्या बात कर रहा था? आपसे एक सवाल करूंगा, ये बताएं आपको जो खाना खाते हैं, मसलन सेब खाते हैं, सेब में आयरन बहुत ज्यादा है, विटामिन ई है, इसे हिलाएं नहीं, सेब में आयरन है, विटामिन ई है, सारा कुछ है, ये है A to Z सब कुछ है। आपको सेब के अंदर वो नजर आता है? अनार में जो फायदा है फौलाद का, आयरन का, अनार में वो चीज नजर आती जी? अंग्रेज और साइंसदान की बिन देखे हम कहते हैं है, پر مدینے والے کے فرمان کے لیے کہتے ہیں کوئی دلیل لے آؤ. مجھے سائمن ٹائبر کے اس حال میں بتائیں کوئی بندہ دکھا سکتا ہے کہ آکسیجن یہ جا رہی ہے آکسیجن. لیکن ہے اگر یہی بند ہو جائے تو سب کے دم گھٹ کے مر جائیں. مجھے سائمن ٹاور کے کراچی کے اس حال میں کوئی بتا سکتا ہے کہ اسی دنیا بیٹھی ہے اور یہاں ہر کے موبائل کے سگنل آ رہے ہیں, کسی کا وارد, کسی کا ٹیلینار, کسی کا زونگ, کسی کا یو, کسی کا فلاں, اس کے سگنل مجھے کوئی دکھا سکتا ہے؟ آپ کے جسم میں جان ہے, کوئی مجھے وہ جان دکھا سکتا ہے؟ جب وہ جان نکلتی ہے تو اس جسم کو ڈیڈ باڈی اور مردہ جسم کہتے ہیں, ہے کوئی؟ وہ جان کہاں ہے؟ دکھائیں دکھائیں بھائی کہاں ہے. پر ہے. بجلی کی تار کے اندر, تار کاپر کی تار ہے, اس کے اندر مجھے کرنٹ اور بجلی کوئی دکھا سکتا ہے؟ کچھ اندیکھی دنیا کو ہم مان کے چل رہے ہیں. یہ عرش کے فائدے, عرش کے وظیفے, عرش کے وعدے اندیکھے ہیں. رب اندیکھا, اس کے کمال اندیکھا, اس کا عذاب اندیکھا اور اس کا ثواب اندیکھا, اس کے ثمرات اندیکھے, اس کی جنت اندیکھی, اس کے فرشتے اندیکھے, اس کی طاقت اندیکھی. پر ہے یومنون بالغیب, ہے اور ہو کے رہتا ہے, ہو کے رہتا ہے. اور یہ سچ ہے اور یہ حقیقت ہے, یہ ہو کے رہتا ہے اور ہو کے رہتا ہے. ہماری زندگی میں یہ نظام ہے اور ہو کے رہتا ہے. صلاۃ و تسبیح پڑھیں اور یقین کی طاقت کے ساتھ پڑھیں اور اندر کے درد کے ساتھ پڑھیں اور اس گھر سے اور گھر میں زیادہ پڑھیں. مجبوراً مسجد میں, لیکن میں کہوں گا مسجد میں نہ پڑھیں, تاکہ گھر قبرستانی نظام سے نکل کے چمنستانی چمن بن جائے, پھول بن جائے, خوشبو بن جائے, بہاریں بن جائیں. اور میرے آقا کا جو فرمان ہے کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ, یہ گھر اس نظام سے نکل جائے. آپ بچوں کو قبرستان میں پالیں گے, نہ کپڑے صاف ہوں گے, نہ اندر کوئی ان کے پاکیزگی ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر وہ بچے اگر جوتے مارتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں, ماں باپ کا گریبان نوچتے ہیں, پھر شکوا نہ کریں. ان بچوں کو دو چیزیں دیں. میری آپ سے درخواست ہے, ان بچوں کو سب سے پہلے قرآن دے اور سجدے دیں, اعلیٰ ڈگری سارا کچھ دیں, دنیا کی ہر نعمت سب کچھ دیں, پر بچوں کو یہ چیز لازم دیں. کون سی چیز؟ قرآن اور سجدے. اور بچوں کو صلاۃ و تسبیح کا عادی بنائیں, صلاۃ و تسبیح ان بچوں کی زندگیوں میں ڈالیں. صلاۃ و تسبیح سے بچوں کو خوشحالیاں, خوشیاں, خیریں اور برکتیں دیں. اور صلاۃ و تسبیح سے زندگیوں میں راحتیں اور خوشیاں آتی ہیں اور آئیں گی. کیا خیال ہے آج کے بعد یہ کریں گے اور سورۃ بقرہ بھی پڑھیں گے؟ اس کی ریکارڈنگ گھر میں لگائیں. اور جب سورۃ بقرہ کی ریکارڈنگ گھر میں لگائیں گے, وہ موبائل بھی بعض ٹوٹ جاتے ہیں, ایم پی تھری بھی ٹوٹ جاتی ہیں, بعض چیزیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں اور تالے بھی جل جاتی ہیں. یہ میرے مشاہدے ہیں. کسی کا ہے مشاہدہ کہ جل جاتی ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. ایک یہ بہت سارے ہیں جل جاتے ہیں. مجھے ایک بندے کر کہنے لگا, ہے لگے وہ چیزیں جل جاتی ہیں. میں نے کہا بھائی تم بھی تو سچے ہو, تم کہتے ہو گلا بھی دبائیں آنکھیں بھی باہر نہ آئیں. چلو آنکھیں باہر لانے کا اس کو حق تو دو بےچارے کا, گلا بھی دبائیں اور آنکھیں ہی باہر نہ آئیں. گلا دباؤ گے تو آنکھیں تو باہر آئیں گی, یہ نہیں آئیں گی. آئیں گی بھائی, لیکن آپ اپنے سورۃ بقرہ کو مسلسل دن رات گھر میں ہر کونے میں ایک ایک کمرے میں, ورنہ گھر میں ایک جگہ, ہر لمحہ سورۃ بقرہ چلتی رہے, چلتی رہے. اور میرے آقا کا فرمان, جس گھر میں سورۃ بقرہ ہے وہاں شیاطین بھاگ جاتے ہیں. گندی نالی میں لتھڑا ہوا, آپ نے دیکھا ہوگا گرمیوں میں کتے کیچڑ کی کسی جگہ پہ یا گندی نالی میں بیٹھے ہوتے ہیں. اب کتا گندی نالی سے نکل کے میرے گھر کے کھلے دروازے میں آئے, कभी बिस्तर पे, कभी चारपाई पे, कभी बेड पे बैठे, कभी अलमारी पे बैठे, कभी ड्रेसिंग में बैठे, कभी कहां बैठे, जो जहां बैठेगा वहां बरकतें और सफाई सुथराईपन छोड़ के जाएगा या खबासतें, गिलाजतें, निजासतें, निजासतें छोड़ के जाएगा। वो कुत्ता नजर आता है, शयातीन नजर नहीं आते। सच कह रहा हूं, ये उससे ज्यादा खलीज और खबीस हैं। ये घरों में झगड़े, आपस में नफरतें, दिलों के रोग और गुनाहों का रोजान पैदा करते हैं। मुझे कई जवानों ने बताया, जब से बैतुल खला की दुआ का एहतमाम किया, नेट की हिलाजतों, खबासतों, निजासतों से निकले, गुनाहों से निकले, नजरों में हिफाजतें, कानों की हिफाजतें, दिल के जज्बों में पाकीजगी आई, वो असल में गुनाहों की जिंदगियों के लाने वाले, वो शयातीन, वो जिन्नात जो तेरे तुझे गुनाह की तरफ, जो वसवसे फी सुदूर इन्नास की तरफ मुतवज्जे करते थे, अल्लाह ने उनके सारे बंद बांध दिए और अल्लाह ने उनकी राहें बंद कर दी और फरिश्तों और हिफाजत का निजाम तेरे लिए मुतवज्जे कर दी। हमारी जिंदगी की जरूरत है। और वो मेरे सामने फिर वही हदीस आ रही है कि अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, न बनाओ। कोशिश करेंगे। अब सुने इलायची ड्रिंक। उस दिन मेरा प्रोग्राम हो रहा था, सुबह रोजाना होता है, टीवी पे प्रोग्राम आता है रोजाना, सुबह 7 बजे का मॉर्निंग शो होता है CT42 पे। तो एक किसी ने सवाल किया मुझसे, उन्होंने कहा जी के हमें कुछ चीज बताएं। मैंने उन्हें एक चीज बताई, आपको ही बता दूं, 1 रुपया लगेगा, 1 रुपया। वो दो दोस्त आपस में लड़ पड़े खाना पकाते हुए। तो एक ने ना डोई लकड़ी की निकाल के, लकड़ी की डोई निकाल के मारना चाहिए, कह रहे थे को भैया जरा इकराम से मारना, दुख बड़ा होता है। मैं पुरानी सी बात बताऊं, यहां दिल्ली मर्केंटाइन को क्या कहते हैं, सोसाइटी है एक, हाँ नहीं वो एक तो है हिल पार्क के साथ है कदना। हाँ, वहां मैं खाना खा रहा था, कुछ दोस्त और भी थे। साहब खाना ने ना सालन सामने साथ रखा, रोटी भी थी, हालांकि हमारे वालिद साहब के पुराने जानने वाले थे। पता है उन्होंने लफ्ज क्या कहा, आज भी मुझे याद है। कहने लगे देखे भाई सालन है लग लगा, जरा सालन का इकराम कीजिएगा, ऐसा नहीं है पानी की तरह यहां से डुबकी लगाओ और वहां से निकल जाओ। एक मुख्तसर से एक चीज बताना चाहूंगा, एक इलायची छोटी, एक बड़ी इलायची और एक छोटी काली हड़, हड़ जानते हैं ना, हरीड़ भी कहते हैं, हड़ का मुरब्बा भी होता है। एक बड़ी हड़ है और एक छोटी काली, उसे जंग हड़ भी कहते हैं, जौ हड़ भी कहते हैं, काली छोटी हड़ भी कहते हैं। बस अब बताएं 1 रुपया लगेगा नहीं लगेगा। बस दवा भी तैयार और ड्रिंक भी तैयार। क्या करें, पानी की बड़ी बोतल ले लें, जरूरी नहीं है कि बाजार की पैक बोतल लें 100-200 की, नहीं तो खाली बोतल में घर का पानी भर लें। पानी की बोतल लेके इलायची उसमें डाल दीजिए, इलायची अगर हल्की सी कूट लें, इलायची हड़ ना कूटिएगा, इलायची एक छोटी एक बड़ी और एक हड़ उस बोतल में डाल दें, दवा तैयार, बस खत्म। कोई पकाने की जरूरत नहीं, कोई उबालने की जरूरत नहीं, बस वो बोतल पड़ी रहे, यानी वो दवा उसमें पड़ी रहे और उसका पानी आप पीते रहिए, पानी पीते रहिए। अब ये जरासीम से पाक ऐसा पानी है, इससे बड़ा कोई दुनिया का मिनरल वाटर नहीं है, मिनरल वाटर इससे बड़ा दुनिया में नहीं। एक तो जरासीम से पाक पानी है और बेहतरीन खुशबूदार पानी है। अच्छा, इसका रंग ऐसा होगा कि जैसे आप ब्लैक ड्रिंक पीते हैं, कोक पेप्सी ने ब्लैक ड्रिंक पीते हैं, इसका रंग ऐसा हो जाएगा, हल्का 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 सा ऐसे हो जाएगा, हल्का सा, जितना हरीड़ घुलती जाएगी अपना रंग देती जाएगी। अब इसके फायदे सुनिए जरा गौर से, फायदे सुनिए। हमारा जितना भी बीमारियों का निजाम है, तकलीफों का निजाम है, ये सारा का सारा खून के जरिए ही होता है। चर्बी खून में है, कोलेस्ट्रॉल खून में है, यूरिया खून में है, यूरिक एसिड खून में है, क्रिएटिनिन खून में है, खून का गाढ़ा होना खून में है, खून को पतला करने के लिए दवाई खा रहे हैं खून में है। अच्छा, पथरी जो बनती है वो खून के अंदर, गुर्दों के अंदर निजाम डिस्टर्ब होता है, जर्रा जर्रा जमा होते होते आखिर स्टोन पथरी बन जाती है। साइंस कहती है अगर सिर्फ इस खून को ठीक कर लिया जाए तो सारी गाड़ी ठीक होगी। गाड़ी का ना फ्यूल कम हो रहा था, मैं सफर कर रहा था, मैंने कहा कि आप चेक करें, देखें टैंकी बहुत नीचे जा रही है। बस गाड़ियों में लिखा हुआ आता है कि आप इतने किलोमीटर सफर कर सकते हैं। मुझे कहने लगे ये पेट्रोल पंप ठीक नहीं है, इसमें पेट्रोल ठीक नहीं होता, गाड़ियों में कचरा आ जाता है, अक्सर खराबी होती है, फलां के यहां सुपर पेट्रोल है वहां से डलवाऊंगा। ओहो, मैंने कहा इसका मतलब है कि अगर गाड़ी में सुपर पेट्रोल ना हो तो गाड़ी का सारा निजाम खराब हो जाता है। अगर हमारे अंदर सुपर ब्लड खून ना हो तो हमारा निजाम भी खराब हो जाता है, हमारा निजाम भी खराब है। अगर सुपर ब्लड चाहिए, सुपर खून चाहिए, सुपर ब्लड चाहिए और सुपर खून चाहिए, तो आप बेहतरीन तरीका बताता हूं, इस पानी को पीना शुरू कर दें और बच्चों को पिलाना शुरू कर दें। ऐसा जबरदस्त पानी है, ऐसा जबरदस्त पानी है, उसके अंदर तासीर बड़ी अजीब है। जिस शख्स को छींकों का तूफान आता हो, वो एलर्जी की वजह से है, वो किसी की वजह से, वो बड़ी इलायची मुंह में रखे और उसको चबाता रहे, बड़ी इलायची मुंह में रखे छिलका समेत, ये बड़ी इलायची जो अक्सर पुलाव बिरयानी सालन में डालते हैं, मुंह में रखे उसको चबाता रहे दिन में तो 3-4 बार, हिचकी का इलाज है, हिचकी, ना रुकने वाली हिचकी, ना खत्म होने वाली हिचकी का बेहतरीन इलाज, और जिसको छींकों का तूफान हो उसका इलाज, और जिसकी नींद की कमी हो और उसके अंदर जहनी जो है इंतशार रहता हो उसका बेहतरीन इलाज बड़ी इलायची है। चलो छोटी इलायची को भी एक बात मैं एक वजीफा भी देता हूं, छोटी इलायची का आप थोड़ी सी छोटी इलायची ले लीजिए, एक तस्बीह पढ़ ले उसमें या मजीदो की, या मजीदो, या मजीदो। काबा की जड़ों में दरूद इब्राहिमी में इन्ना का हमीदुम मजीद आता है, आता है। काबा की जड़ों में दो चीजें होती हैं, दो अल्लाह के नामों की ताकत है, और यह सारा जमजम उसी से निकल रहा है, लाखों लीटर निकलता है, पानी खत्म नहीं होता, और जमजम का कुआं काबा के बिल्कुल साथ है। पहले लोग जो जाते थे वो बकायदा कुएं के नीचे उतर के जाते थे, मजमे की ज्यादती की वजह से ऊपर से वो बंद कर दिया गया। कुआं तो अब भी है और जमजम उसी की सौगात है। ये अल्लाह के इन दोनों नामों की ताकत और तासीर है, ये अल्लाह के इन दोनों नामों की ताकत और तासीर है। जो शख्स छोटी सी इलायची ले और उस पे एक तस्बीह पढ़े या मजीदों की, और वो मुंह में चंद बार छोटी इलायची रखे, दुनिया का कोई नशा छोड़ना चाहता है और दुनिया की कोई आदत बद छोड़ना चाहता है, अल्लाह गैब से ऐसा निजाम पैदा करेगा कि हर नशा छूट जाएगा, हर आदतें बद छूट जाएगी। बस वो इलायचियों पे या मजीदों की एक तस्बीह पढ़े और चाहे तो रोजाना पढ़ ले, तासीर दोगुनी चौगुनी हो जाएगी, और उसको मुंह में रख के चबाते रहें, और अल्लाह गैब से ऐसी पाकीजगी, ऐसी तहारत, गुनाहों से नफरत, किसी इल्लत से नफरत, किसी पान गुट्टे सिगरेट नसवार से और नफरत ऐसी आएगी, ऐसी आएगी, अल्लाह दहन को भी पाकीजा, अल्लाह लहन को भी पाकीजा, अल्लाह दिल को कोई पाकीजा, अल्लाह तबीयतों को भी पाकीजगी अता फरमाएगा। जो इलायची के ऊपर एक तस्बीह पढ़ेगा या मजीदों की अव्वल आखिर तीन बार दरूद पाक। बल्कि मेरे तो जी में है कि अपने इलायची ड्रिंक में यही इलायची डाल दें। एक तस्बीह कौन सा है, कोई देर लगती है, कौन सी देर लगती है एक तस्बीह पे? और जो हड़ है ना, हड़, इसके बारे में एक चीज बताऊं, हिंदू के देवताओं की किताब में एक बात लिखी है कि जब हमारे देवता पैदा हुए थे तो उनके हाथ की मुट्ठी में हड़ थी, और जब मुट्ठी को खोला तो उसमें हड़ थी, और वो एक पैगाम लेके आए थे कि आखिरी इंसान तक जितने भी लोग होंगे उनकी शिफा और उनकी राहत का जरिया हड़ है। हड़ उनकी शिफा और राहत का जरिया हड़ है, हड़ है। आपको इल्म है कि पहले पुराने लोग हड़ मुंह में रखते थे? कोई है, कोई बता सकता है ये बात सच है? किसी ने सुनी देखी? किस्सा पारी ना हो गया, पुराने किस्से हो गए। कभी हम भी तुम में भी चाहती, कभी हम भी तुम थे आशना, तुम्हें याद हो के ना याद हो, फसाना ये गम मुझे याद है। ये तो किस्सा ही पारी ना हो गया। अब चिकम चिंगम और टॉफी रखते हैं, पहले हड़ रखते थे, और हड़ से सारी जिंदगी का निजाम बेहतर हो जाता था। अब ऐसा करें, ये आप ड्रिंक बना लें, इलायची ड्रिंक, और इस पानी को सारा दिन यही पानी पिए। आप गाड़ी में सफर करते हैं, तीन बोतलें बना लें, एक दफ्तर में रख लें, दुकान में रख लें, एक घर में रख लें, एक गाड़ी में रख लें। इसमें से पानी पीते रहिए, पीते रहिए, पानी और डालते रहिए, और खत्म और डाल दें। तीन चार पांच दिन के बाद देखें कि इलायची की तासीर कुछ कम हो रही है, एक इलायची और डाल दीजिए, एक हड़ और डाल दीजिए, छोटी बड़ी इलायची एक और उसी में डाल दीजिए, बस। इसकी तासीर कमाल है। हाई ब्लड प्रेशर जितना जितना गहरा हो, और शुगर जितनी लाइलाज हो, और जो मेदे की दवाइयां खा खा के थक गए हैं, कब्ज गैस तबखीर की दवाइयां पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कराची में बिकती हैं, अगर जो थक चुके हैं वो इसका इलाज करें और यही पानी पिए। आज वैसे भी साइंस कह रही है कि हमारे जिस्म में पानी की कमी हो रही है, हम पानी बहुत थोड़ा पीते हैं, और उसकी वजह से खून गाढ़ा होता है, पथरी बनती है, उसी की वजह से ब्लड प्रेशर हाई होती है, उसकी वजह से मसाइल बीमारियां पैदा होती हैं। अच्छा, ना साफ पानी का रोना बहुत पुराना है कि हम जो पानी पी रहे हैं वो साफ नहीं, उसमें बैक्टीरिया और वायरस है, और ये वो चीजें बता रहा हूं जो बैक्टीरिया और वायरस को उठा के उल्टा कर देते हैं। उल्टा कर देते हैं। बहुत सस्ता, बहुत लाजवाब, लेकिन बेहतरीन मेदे की बीमारियां, हेपेटाइटिस का इलाज है, और जिगर के मसाइल का इलाज है, आंतों गैस तबखीर का इलाज है, फूले हुए जिस्म का इलाज है, और जिसमें कोई हजम ना होता हो वो इलाज है। हामला खवातीन को पहले पानी बिल्कुल नहीं पिलाती थी, डिलीवरी के दौरान अर्कियात पिलाती थी, किसी को याद हो तो, हामला को पानी बिल्कुल नहीं पिलाती थी। ये हामला खवातीन को ये पानी पिलाएं, घर में अमूमी सेहतयाबी के लिए इस पानी को रख लें, एक छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची और एक काली हड़, बस इसको रख लीजिए और इसको पीते रहिए, पीते पीते जिंदगी बेहतरीन लाजवाब हो जाएगी। जिसके दांतों के मसाइल हैं वो हल हो जाते हैं, आंखों के मसाइल हल होते हैं, नजर को, याददाश्त को ये चीज, ये पानी बहुत तेज करता है, और नजर और याददाश्त के लिए, सेहतमंद जिंदगी के लिए लाजवाब, और स्किन के लिए लाजवाब है, बेहतरीन जिल्द के लिए लाजवाब है, सेहतमंद है। और जिगर को तो मैंने बताया, हेपेटाइटिस का, ब्लड प्रेशर और शुगर को तो मैंने आपको वैसे ही बताया। ये पानी आपकी सेहत के लिए लाजवाब है। बनाएंगे? मुश्किल तो नहीं? बिल्कुल मुश्किल नहीं। अच्छा, आप जब देखें कि हड़ में से, और हड़ तो वैसे घुल जाएगी, छोटी बड़ी इलायची में आप देखें उसकी तासीर खत्म हो गई है, उसको निकाल के, उसको चबा के, उसका रस चूस के आप उसका उसकी फूंक फेंक दें और नई बोतल में नई डाल दें, कोई मुश्किल नहीं। छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी रूहानी फिटनेस के लिए और जिस्मानी फिटनेस के लिए बहुत बाकमाल है, बहुत पुरतासीर है, बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। एक और टोटका देता हूं, एक और टोटका देता हूं। आपने कभी कोई बात सुनी थी कि पहले दौर में कानों में तेल भी डालते थे और देसी घी भी डालते थे? कोई ऐसा बंदा बैठा है जिसने सुना हो? बहुत सारे हाथ खड़े हुए ना, एक हाथ खड़ा करें, दो ना खड़े करें, फिर बहुत सारे नजर आते हैं, एक खड़ा करें। हैं? आप डालते हैं? क्या डालते हैं? कानून। मोबाइल ने बहरा कर दिया, एक बहुत कीमती टोटका दे रहा हूं, गौर से सुनिएगा। थक तो नहीं गए? जान छोड़ दूं? हैं? देखो खाना लग लगा है, जरा आप ख्याल कीजिएगा। सालन भैया लग लगा है, ख्याल कीजिएगा। मोबाइल हमारी जिंदगी के लिए, मैंने कई लोग देखे हैं वो दूसरी पुकार के बाद सुनते हैं, मोबाइल की वजह से उनका निजाम आलूदगी, फजाओं में धुएं की आलूदगी। दो, अब सुनते जाइएगा, शोर, हारन का, मशीनों का, चीजों का शोर, गाड़ियों का शोर, ये बड़ी बड़ी जो बस्तियां बसाई जाती हैं डिफेंस के नाम पे, फलां के नाम पे, यहां असल चीज यही है, शोर ना हो, आलूदगी ना हो, यही हो। बस्ती जो बड़ी बड़ी बस्तियां बसाई जाती हैं, यही तो होता है, शोर, आलूदगी, मोबाइल। और चौथी चीज है, हमारी गिजाओं में चिकनाइयां खत्म हो गई हैं और मस्नूई चिकनाइयां आ गई हैं। मक्खन भी जो हमें मिल रहा, वो भी वो सब्जियों का कचरा होता है, सब्जियों का। मैं अभी आ रहा था कि हमारे वहां लाहौर में जगह जगह गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो लगे हुए थे, पेनाफ्लेक्स लगे हुए थे, ख्याल करना ये चीजें मस्नूई हैं, ये चीजें मस्नूई हैं, ये चीजें मस्नूई हैं, इनमें कोई फल नहीं, कोई मक्खन नहीं, कुछ भी नहीं होता, बकायदा नाम लिखे हुए थे सड़कों के ऊपर, आगाही दी हुई थी। जेल रोड, मेरा घर है जेल रोड, और जेल रोड सीधा एयरपोर्ट की तरफ आता है, मैंने ये देखा, वहां लिखा हुआ था। गिजाओं का असर हमारे ईएनटी पे पड़ रहा है, ईएनटी कान नाक और गले पे पड़ रहा है, हमारा दिमाग खाली हो रहा है। आप एक चीज महसूस करें, एक चीज सबसे ज्यादा ऐनक कराची में है, लाहौर में भी है, हर जगह ऐनक है। तनासुब, तनासुब जरा कंपैरिजन कीजिए, सबसे ज्यादा ऐनक कराची में है। क्यों? हमारी गिजाओं से वो सेहतमंद गिजाएं निकल गईं, वो तंदुरुस्त गिजाएं निकल गईं। तो फिर ये बताएं, मेरी तरफ देखें, देखें भाई, हमारे सामने एक बंदा सो रहा है, मेरे सामने एक बंदा सो रहा है, मैं ऊपर देखूंगा, उसकी तरफ नहीं देखूंगा, ताकि कोई उसको पकड़ ना ले, और बाकायदा यूं करके सो रहा है। कोई बंदे ना ऐसे पकड़ के ऐसे करते हैं कि भैया यहां तक आना हमारा काम है, नींदा अब आना तेरा काम है, बाकायदा यूं करके ना पूरी पोजिशन के साथ, अभी तक उसने अपनी पोजिशन नहीं बदली, मुंह खावे ते आंख शर्मावे, मजबूत आसाब का आदमी है। देखिए, ये मस्नूई चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, जिसकी वजह से हम अपनी जिंदगी की एन के बढ़ गईं, समातें खराब हो गईं, याददाश्तें खत्म हो गईं, चीजें भूल जाना नौजवानों का मसला बन गया। बोले मेरी बात है? पहले बूढ़े होते थे, कह रहे भैया अब बुढ़ापे का अकल है, अब तो चीजें भूल जाती हैं, हम नौजवान भूल जाते हैं, नौजवानों की एन के बढ़ रही, पहले बुढ़ापे की एन के बढ़ती थी। क्यों? ये मैं सवालिया निशान छोड़ता हुआ जा रहा हूं, छोड़ता हुआ जा रहा हूं, और मेरी हर बात आपका दिल मान रहा कि मैं आपको अलिफ लैला के किस्से नहीं, इस मुआशरे के हकायक बता रहा हूं, और मैं अपने वतन के सेहतमंद मुआशरे के लिए सारे टोटके बता रहा हूं, मेरे वतन का मुआशरा सेहतमंद रहे। मेरे पास एक बहुत बड़े डॉक्टर आते हैं, कानों के डॉक्टर हैं, ENT के। मुझसे कहने लगे जी कि आपसे पहले हमारी साइंस कहती है कि कान में सिवाय मजबूरन कोई ड्रॉप्स के, कोई बीमारी के कुछ न डालें। अब हमारी साइंस कहती है कि हमारे कानों के अंदर की विक्स खत्म हो रही है, कानों के अंदर एक मैल होती है जो कान की जरूरत है, जिसे कह दें कान की ग्रीस है, वो जरूरत होती है, वो खत्म हो रही है मोबाइल के वजह से, मोबाइलों की लहरें। आप महसूस करें मोबाइल में ना सर्दी हो या बाजों का तो अंदर से ऐसे निकल रही जैसे हवा निकल रही लगती है बकायदा उसका ना, जहां से स्पीकर है ना वहां से आप महसूस करें, वहां से कोई लहरें सी अपने आपके होंठों को, कानों को टच होती है, मोबाइल की वजह से, आलूदगी की वजह से, फजाओं की वजह से, गिजाओं की वजह से, और फितरी चीजों से दूरी होने की वजह से, शोर की वजह से विक्स कम हो रही है। और कान का एक मिजाज है, जब यह अपनी मैल ज्यादा बढ़ा देता है टुकड़ा बना के खुद निकाल के फेंक देता है, इसलिए कहते हैं कान में कुछ चीज न डालें। एक सियाने ने कहा था कान को कोहनी से खुजाएं, उंगली से ना खुजाएं। किससे? कोहनी से खुजाना, उंगली से। अब भाई कोहनी से मैं तो नहीं खुजा सकता मैंने बड़ी कोशिश की, कोई यहां बैठा है कोई कराची का कलंदर तो कह दे, लाहौर में तो कलंदर बहुत है, कुल अंदर कलंदर, कुल अंदर लाहौर, और ले आओ लाहौर, अभी और ले आओ, और ले। मेरे साथ उस दिन मैं बैठा हुआ था एक जगह, एक बहुत मोटा आदमी, बहुत मोटा, मुझे कहने लगा आप कहां रहते हैं, मैंने कहा फलां जगह, अरे हम तो वहां पराठे और लस्सी खाने पीने जाते हैं दिन रात वहां, मैंने कहा हाँ हमारे घर के साथ सारा फूड स्ट्रीट है, खाने पीने का पुराना निजाम है, लेकिन वहां तो हम जेल रोड पे बड़ा खूबसूरत जगह है और हम वहां पराठे खाने जाते हैं। मैंने कहा ये इतना बड़ा मोटापा, लटका हुआ पेट और वेट, फिर भी पराठे खाते हैं। कहने लगा दिल तो चाहता है ना, सिर्फ बहादुर आदमी दस्तरखान पे हाथ अपना कंट्रोल कर सकता है, कभी कोई आदमी नहीं कर सकता। दस्तरखान पे हाथ कंट्रोल करने के लिए बहादुर आदमी चाहिए। कौन सा आदमी चाहिए? तो है नहीं, मैंने नहीं खाना। तो क्या बात कर रहा था इससे पहले? विक्स खत्म हो रही है। अब वो कहते हैं, मुझे कहने लगे हमारी साइंस कहती है कि अब इस कान में कोई ऑयली चीज डाली जाए। मैं बात ये कर रहा था, ये सारी मिसालें देके, और हमारी तिब पुरानी, बूढ़े पुराने, आपके बुढ़ापे में जितने बूढ़े समझदार, अकलमंद, सेहतमंद, तंदुरुस्त, उसकी वजह है वो क्या करते थे? चंद चीजों को तेल पिलाते थे, लाठी को तेल पिलाते थे, आपने बूढ़ों की लाठी देखी नहीं, उन पे तेल लगाते थे, जूती को तेल पिलाते थे, बदन को तेल पिलाते थे, और कानों को तेल पिलाते थे, सर को तेल पिलाते थे, पिलाते थे। मैं लगाते की बात नहीं कर रहा, मैं लगाने की बात कहां कर रहा हूं, मैं तेल पिलाने की बात कर रहा हूं, मैं पिलाने की बात कर रहा हूं। मैं इतर लगाता हूं, मैं बाजू का दिन में दो शीशियां खत्म कर देता हूं, आप हैरान होंगे, और मैं सच कह रहा हूं, एक शीशी एक दो दिन में खत्म। अभी कराची में मेरी दूसरी शीशी चल रही है, आज तीसरा दिन है कराची में मुझे आए हुए, आज तीसरा दिन है, कल चौथा दिन होगा, कल शाम को इंशाल्लाह वापसी है मेरी। मैं कराची में दूसरी शीशी मेरी चल रही है
इतर की।
अगर मैं आपको फायदे बता दूं तो अभी आप पैसे से कि भाग हम भाग जाके इतर लेंगे, इसके फायदे जानबूझ के नहीं बताऊंगा, कहीं आप अच्छे ना हो जाएं।
नहीं भाई, पहले एक से तो जान छुड़वाऊं,
कहां जाऊं अकेला। पहले एक सुन लीजिए, कानों को तेल पिलाएं, देसी घी अगर गाय कहो असली, अपनी गाय है उसकी बलाई है, उसकी देसी घी निकाला है, वो कानों को पिलाएं, और अगर फिर भी किसी को मेरी बात पे शक हो, क्योंकि ज्यादा पढ़ लिख के बाजों का पुरानी रीत रिवायतें पुराने टोटकों पे शक आना शुरू होता है, फिर चुप करके आपके पास एक लाइब्रेरी है, वो आर हर बंदे के पास है, नेट और मोबाइल के नाम पे रिसर्च है, कानों पे तेल डालने की रिसर्च, इसके फायदे ये सारे के सारे नेट की दुनिया में मौजूद हैं, आप निकाल के खुद चेक कर लें, आपको मेरी बात की तस्दीक हो कि इस वक्त हमारी आलूदगियां, मोबाइल, गिजाएं, शोर और हमारी जिस्म की खुश्कियां इतने बढ़ रही हैं कि हमारे जिस्म को जरूरत है तो कानों को भी जरूरत है। कोई सा तेल, सबसे बेहतरीन तेल जैतून का है, अल्लाह ने कसम उठाई है, सरसों का तेल है खालिस, और देसी घी है, आप ड्रॉपर ले लें, सख्त सर्दी है अगर है गर्म पानी का कप ले, उसमें ड्रॉपर डालें, ड्रॉपर गर्म हो जाएगा, नीम गर्म हो जाएगा, गर्म ना हो, नीम गर्म हो, वो कानों में डालिए, अगर मौसम गर्मी का है तो कोई उसे गर्म करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। जिन लोगों को खुराटे आते हों, घर वाले परेशान हो, थक गए हों, मैं एक जगह गया तो एक बंदे के सिरहाने के साथ उसका जूता रखा हुआ था, मैंने कहा ये किया, कहने लगे ये टोटका है, जिसको खुराटे आते हों तो उसके जूते को उसके सिरहाने के साथ रख दिया जाए। मैंने कहा मैं इसका बताता हूं, आप ऐसा करें कि इसके नाक में तेल डालें, नाक में तेल, और कानों में तेल डालें, कानों का रास्ता भी हलक में खुलता है, नाक का रास्ता भी हलक में खुलता है, ये सारा अंदर से एक है। कुछ अरसे के बाद कहने लगे जी आपने तो हमारी जान बचा दी, घर वाले परेशान थे और खुराटों का मसला हल हो गया। अगर बच्चों की सेहत चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब भी अपने बच्चों के तेल डालता हूं, बच्चे मेरे लैन लगा के ये सो रहे होते हैं, उस पे डाला फिर उसको ऐसे ऐसे मले, कभी भी कान के अंदर ना मले, ये कान के ऊपर छोटा सा जो ढकना है ना, ये ढकना अंगूठे के साथ, और वो अंगूठा जिस पे नाखून ना हो वरना जख्मी कर देगा, ऐसे मले गुलाई की शक्ल में, ये देखें जैसे मैं मल रहा हूं ऐसे गुलाई की शक्ल में मले, 5-10 मिनट मले, फिर दूसरे कान में डाले, और भी वक्ती तौर पे बाजों का अगर कान बंद भी हो जाए तो कुछ दिनों के बाद, कुछ देर के बाद, कुछ लम्हों के बाद खुद ब खुद खुल जाता है। ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये सेहत और तंदुरुस्ती का राज है। और फिर मैं हर चीज के साथ साइंस का कंपैरिजन, मवाजना कर रहा हूं कि बाजोकात बाज बंदे चूंकि नॉलेज न होने की वजह से छोटी सी बात पे एतराज करते हैं। मैं कहता हूं आप साइंस की दुनिया में चले जाएं, मैंने अपनी साइंस के ऊपर बहुत किताबें पे काम किया है, मेरी सबसे पहली किताब 1997 में आई, सुन्नत नबवी और जदीद साइंस, और फिर वो 1800 सफों की किताब है। दूसरी किताब मेरी मौलजात नबवी और जदीद साइंस, जिसपे काम किया और तकरीबन 20 साल हो गए, 2400 सफों की किताब है। किताबें हैं छोटी बड़ी, आप साइंस पे आए, तहकीक करें, और मैं आपको दावत दे रहा हूं कि मेरे कानों की ये बात जब मैंने आपसे अर्ज की है, इसकी रिसर्च में चले जाएं, आपको इसकी इसकी नेगेटिव भी मिलेगी, पॉजिटिव भी मिलेगी, और नेगेटिव वो है जो पहले थी, पॉजिटिव और इसके फायदे वो हैं जो लेटेस्ट रिसर्च है। साइंस की रिसर्च बदलती रहती है, रीत और रिवायतें और पुराने तजर्बे कभी नहीं बदलते, कभी नहीं बदलते। फायदा हो रहा है मेरी बातों है? और मोबाइल के असरात हैं, मोबाइल की लहरें कानों को खा रही हैं। मुझे एक ट्रैफिक के ऑफिसर ने एक बात बताई, उसने कहा जी हादसात की वजह मोबाइल है। मैंने कहा मोबाइल का इस्तेमाल? कहा वो भी, और मोबाइल की वजह से साथ वाली गाड़ी का शोर और हॉर्न समझ नहीं आता और बंदा बिल्कुल मुतमैन होता और हादसे हो जाते हैं। कान सुन हो गए हैं, कानों की समात खत्म हो रही है, और पहली पुकार पे बाज बंदे तवज्जो नहीं करते, दूसरी पुकार पे, और कुछ अरसे के बाद उन्हें एहसास होता है कि मोबाइल आलूदगियां और शोर और गिजाओं की वजह से हम बहरे हो रहे हैं। हो नहीं गए, हो रहे हैं, हो नहीं गए, हो रहे हैं, हो रहे हैं। जो बंदा नाखून काटने के बाद अपने नाखूनों पे तेल लगाएगा वो कभी अंधा नहीं होगा, कभी नजर कमजोर नहीं होगी, कभी याददाश्त कमजोर नहीं होगी, कभी उसके आसाब और दिमाग खींचेंगे नहीं। जो नाखून काटने के बाद नाखून पे हल्का सा तेल लगा देगा, पांव और नाखून, जो लाइलाज बीमारियां चाहता है और जो चाहता है कि मेरे घर में रिस्क खत्म हो और जिंदगी में सुकून खत्म हो, वो पांव के नाखून बढ़ाए। समझ नहीं है? जो ये चाहता है कि मेरे घर में रिस्क खत्म हो और मेरी जिंदगी में सुकून खत्म हो, वो पांव के नाखून बढ़ाए। अक्सर आप देखेंगे लोगों को हाथ के नाखून तराशे हुए होंगे, पांव के नाखून अमूमन बढ़े हुए होंगे उस तरफ, क्योंकि लोगों की नजर नहीं जाती। पांव के नाखून। और एक बात और भी बता दूं, मैं वजायफ बताता हूं, बनाता नहीं। समझ नहीं आई? ना, सो रहे थे ना, ना। मैं वजायफ बताता हूं, बनाता नहीं हूं। अगर मेरे वजायफ की किसी को दलील चाहिए तो एक नेट पे पेज है, उसका नाम है अकाबिर पर एतमाद। यूं लिखें और मेरे हर वजीफे की कुरान से या हदीस से या तफसीर से या मुहद्दिसीन से या औलिया सालहीन और अकाबिर से दलील मिलेगी। मेरे 1200 से ज्यादा नेट पे दर्श पड़े हैं, हर दर्श के पीछे जो वजायफ मैंने बताए हैं उन वजायफ की सनत और दलील मिलेगी। आप पेज पे चले जाएं और लिखें अकाबिर पर एतमाद, फौरन वो पेज खुल जाएगा। सिर्फ क्या लिखेंगे उर्दू में? अकाबिर पर एतमाद। मेरे अकाबिर ने जो वजायफ तस्बीहात बताई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वही बताता हूं, ढूंढ ढूंढ के ले आता हूं। बाज बेचारे गलतफहमी की बुनियाद पे कोई बातें कर जाते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि अकाबिर पर एतमाद पेज उठाएं। मेरी हर वजीफे, हर तस्बीह, जिन्नात का पैदाइशी दोस्त जो कालम चल रहा, ये सब अकाबिरीन के साथ वाकयात हो चुके हैं, मुशाहिदात हो चुके हैं, जिन्नात के साथ ये जिंदगी गुजर चुकी है, गुजर चुकी है ये सारी चीजें, और रोज आ रही हैं अकाबिर पर एतमाद पे, रोज पोस्टें आ रही हैं अकाबिर पर एतमाद पे, रोज पोस्टें आ रही हैं। ये सब चीजें हैं। मैं वजायफ बताता हूं, बनाता नहीं हूं, बताता हूं, बनाता नहीं हूं। तो मैं कह रहा था जो नाखूनों पे तेल लगाए उसका दिमाग मजबूत, नजर मजबूत, सेहत मजबूत, जब नाखून काट लें, और जो नाखून बढ़ाता है वो सुकून खोता है और रिस्क खो जाता है उसका। पांव के नाखून जिसके बढ़े हुए होते हैं अपने पांव के नाखूनों का ख्याल नहीं रखता। ये मैं आपको जिंदगी के रहस्य बता रहा हूं, ये जिंदगी के टोटके बता रहा हूं। क्या लगा देखना, ये गाड़ी आप चला रहे हो, अगर यहां से हीट की सुई ऊपर जाएगी ना, तुम्हारे इंजन को खतरा है। अगर यहां से ऊपर जाएगी, इंजन फेल हो जाएगा। अगर यहां से ऊपर जाएगी, इंजन सीज भी हो जाएगा और खड़ा भी हो जाएगा। ये तो छोटी छोटी सुइयां हमें समझ देती हैं, और जो रूहानी और तिब्बी टोटके की सुइयां ऊपर जा रही, ये हमें समझ क्यों नहीं देती, इस तरफ हमारी नजर क्यों नहीं जाती, क्यों नहीं जाते। जिंदगी की ये शहराएं हैं और ये हमारी फिटनेस और जिंदगी के टोटके हैं। अब एक और टोटका देता हूं आपको, दूं आपके यहां आके मैं नारियल खाता हूं, लाहौर में भी बहुत मिलता है, आपके यहां नारियल है ज्यादा, घर घर में उगा हुआ है, और जहां नारियल ज्यादा हो वहां उसकी वो कदरदानी नहीं होती, वो चीज नहीं होती, होती है नहीं होती। आए मैं आपको एक तोहफा देता हूं, जो बंदा खाने के बाद, गौर से सुनिएगा, बड़ा तोहफा दे रहा हूं, बड़े बड़े मसले हल हो जाएंगे आज इंशाल्लाह, अल्लाह के नाम की बरकत से। वकफा बिल्लाह वलियम वकफा बिल्लाह नसीरा, जो बंदा खाने के बाद नारियल का थोड़ा सा टुकड़ा खा लेगा, ताजा नारियल, ताजा, और जिसको ताजा मयसर नहीं वो खुश्क नारियल को भिगो के रख दे तो वो भी यही फायदा पाएगा। लेकिन आपके यहां ताजा नारियल तो सस्ता मिल जाता है, समंदरी शहर है। जो बंदा ये चाहता है उसका पेट ना बढ़े, उसका वेट ना बढ़े, उसकी चर्बी ना बढ़े, सबसे आखिर में पेट की चर्बी खत्म होती है और सबसे पहले पेट की चर्बी बढ़ती है, ये बता दूं मैं आपको। सबसे पहले क्या चर्बी बढ़ती है? पेट की चर्बी बढ़ती है, और सबसे आखिर में पेट की चर्बी ही खत्म होती है, सबसे आखिर में, सबसे आखिर में पेट की चर्बी खत्म होती है और सबसे पहले पेट की चर्बी बढ़ती है। यह सब बेहतरीन इलाज है, जिनको पेट के कीड़े हों उसका बेहतरीन इलाज है। और ताजा नारियल, तो ताजा नारियल या फिर ऐनक, दोनों में से एक चीज रह सकता है। उसने कहा या घर में तू रहेगा या मैं रहूंगा, या नारियल रहेगा या ऐनक रहेगी। जिस मुआशरे में नारियल हो और उस मुआशरे में ऐनक का इस्तेमाल कसरत से है, मालूम हुआ कि वो मुआशरा नारियल नहीं खा रहा, मुआशरा नारियल नहीं खा रहा, फिर उसका नारियल पंजाब बलोचिस्तान सिंध में और पता नहीं कहां जाता है, वो खुद नहीं खाते, खुद नहीं खाते। नारियल को खाने की जगह खाएं, मुसुड़ों का इलाज है, दांतों की चमक का इलाज है, दांतों की पाइवेरिया का इलाज है, दांतों के खोड़ का इलाज और रोग का इलाज है नारियल का चबाना और खाना। और नारियल बढ़े हुए पेट का इलाज, पेट के कीड़ों का इलाज, पुरानी कब्ज का इलाज, नजर याददाश्त का इलाज, और नारियल अंदर से जैसे चमकदार और दूधिया होता है, हुस्न जमाल ऐसे आता है और इतना चमकदार और दूधिया और इतना खूबसूरत होता है और ऐसे जबरदस्त बाग कमाल। हम नारियल खाते नहीं, कभी कभार खा लिया, टुकड़ा ले लिया, वरना फिर मुंह में वो रखा जो पूरा कराची जगह जगह जो है थूकों से भीगा हुआ है। नारियल खाएं, नारियल खाएं। आज मैं आपको रूहानी टोटके ही बता रहा हूं, साथ तिब्बी भी बता रहा हूं, आज मैं दोनों चीजें बता रहा हूं। और नारियल का पानी शुगर वाले मरीज के लिए लाजवाब है, आपके यहां तो बड़ा सस्ता सा पानी मिल जाता है। अच्छा, नारियल कितने का मिल जाता है कराची में? 100 का, 150 का, 120 का मिल जाता है। और अगर 100 रुपए वाला बड़ा सा अच्छा नारियल सारा खा जाए तो उल्टी तो नहीं आएगी? नहीं आएगी, मैं तो खा जाता हूं। खा जाए, रोटी की जगह खाएं। आप खा के देखो सोते, जो फकियां गोलियां सीरप पी रहे और जिनका हाजमा नहीं होता वो नारियल खाएं, कुछ दिनों के अंदर ऐसी भूख चमकेगी, ऐसा पेट अंदर जाएगा, ऐसी फिटनेस आएगी और ऐसी सेहत आएगी कि आप सोच नहीं सकते कि आपको नारियल से कितना फायदा हो। बच्चों को खिलाएं, बच्चों की सेहत तंदुरुस्ती का राज है नारियल। बच्चों को पानी पिलाएं और बच्चों को ज्यादा खिलाएं, ज्यादा खिलाएं, ज्यादा खिलाएं। खिलाएंगे? क्या ख्याल है? अजब चीज है। मुझे एक साहब कहने लगे कि मैं अलीगढ़ से आया हूं, कराची में हमारे बड़े आए थे, हमारे खानदान में कोई औरत और मर्द का पेट निकला हुआ हो तो ऐब होता था। फरमाया नारियल ऐसा होता है जैसे एक वक्त में किसी का पेट निकल आता है, फिर बाज़ औक़ात पेट से पेट मिलते हैं, बंदे से बंदा नहीं मिलता। हमारे एक दोस्त है, मैं उनके पेट पे हाथ रखता हूं, मैं कहना जरा हंसना, वो हंसता है तो पेट हंसता है। मुझे खुद अपने पेट का फिक्र है, आपको इसलिए बता रहा हूं कि मुझे भी ख्याल आ जाए। अल्लाह के हबीब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक साहब मिले, आप उस साहब की उंगली पे रखा आपने, अपने उसकी पेट पे रखा आपने अपनी उंगली मुबारक, फरमाया बदतरीन चर्बी वो है जो पेट की चर्बी हो, मेरे आका ने ना पसंद फरमाया। हम तो गिजाएं वो खाती हैं, मैदे वाली गिजाएं खाते हैं सारा दिन, कभी कभार खा लेना और बात है, कभी कभार चाय पी लेना और बात है, कभी कभार बोतल पी लेना और बात है, मामूले जिंदगी बना लेना, कभी कभार मैं भी चाय पी लेता, मामूले जिंदगी, जिंदगी की तरतीब, तरतीब जिंदगी। मैंने कुछ बूढ़ों से पूछा, बहुत पूछा, मैंने कहा ये बताएं जब आप हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए थे कराची में, आपके बड़े कहते थे कराची और चाय मजबूरी होती है, कहने लगा बिल्कुल नहीं, हम दूध पीते थे, लस्सी पीते थे, उस वक्त भी यही कराची था, उस वक्त भी यही फजाएं थी, उस वक्त भी यही हवाएं थी, उस वक्त भी यही निजाम था, पूछ के देखें बड़ों से, वो कहते थे नहीं, हरगिज नहीं। नारियल खाएं, नारियल खूब खाएं, उसका पानी पिएं, अपने जिस्म को फिट रखें, और कैसे फिट होंगे इसकी बकायदा साइंस ने मिसाल दी है। नारियल बेहतरीन हथियार है बंदर का, बंदर जिस बंदे से नाराज होता है नारियल के दरख्त पे चढ़ के ना वहां से नारियल तोड़ के बम की तरह नीचे मारता है, खोपड़ियां भेजे फाड़ के रख देता है, उसका खोल इतना सख्त होता है। जो नारियल खाएगा उसका जिस्म इतना फिट और ताकतवर होगा जैसे नारियल का ऊपर का खोल और हड्डी होती है जो बड़ी बड़ी हथौड़ियों से तोड़ने के बाद टूटती है। क्या ख्याल है? ऐसे ना? क्या ख्याल है? नारियल के फायदे आपको पता चला है? अच्छा, इससे पहले किसी के पास कोई फायदा ऐसा हो जो मैंने बताया हो बता दें, खड़े खड़े मुख्तसर, कोई फायदा ऐसा हो जो मुझे पता ना हो, मैंने अभी नाम बताया हो, आपके मुशाहदे में आया हो। जी मुख्तसर, नक्सीर के लिए क्यूब्स बना के उसकी, फिर आपने आजमाया? मैंने अर्ज किया था कि नारियल का तेल निकालें, इसका तेल पिए, मोटापे का इलाज, फिटनेस का इलाज। अब भी वो अदाकारा जिंदा है, उसकी जिंदगी का मामूल यही है, वो हमेशा अपनी 50वीं सालगिरह मनाती है, हर साल 50वीं सालगिरह मनाती है, हर साल 50वीं सालगिरह मनाती है। वो 50 साल से आगे जाती नहीं, मई कोई मानता ही नहीं है, बंदा मई 70 साल की है। नारियल का तेल, नारियल का तेल खुद निकालें, खुद निकालें। जी क्या कहने लगे नारियल का तेल मोटरसाइकिल जो एक्सीडेंट होता है, और मैं इसके तजर्बे और भी बताता हूं, नारियल का तेल लें उसमें काफूर डाल दें, दवाई तैयार। नारियल का तेल लें उसमें काफूर डाल दें, दवा तैयार है, काफूर मिक्स हो जाएगा, जहां जख्म हो, ददर हो, दाद हो, चंबल हो, पुरानी खारिश हो, हादसों की रगड़े हो, वहां नारियल का तेल लगाएं, हत्ता के निशान तक खत्म हो जाता है। सर में जूं का इलाज है, और नारियल का तेल सर पे लगाएं, बहुत कमाल चीज है। अब एक और टोटका सुनिए, रूहानी टोटका बताऊं या चलो रूहानी बताता हूं, सजना दी पसंद सजना दी पसंद है। मेरे आका का हर फरमान हक और सच है। मैं एक रिवायत पढ़ रहा था, मैं हैरान हो गया, रिवायत पढ़ रहा था मैं हैरान हो गया। और मैं कि जब बच्चा पैदा होता है उसके सर के बालों पे सूरत तगाबुन की पहली पांच आयात लिखी हुई होती हैं, घुंघरियाले बाल झंड जिसे कहते हैं, उसके सर के बालों पे सूरत तगाबुन की पहली पांच आयात, ये दुर्रे मंसूर की रिवायत मैं पढ़ रहा था और बहुत हैरान हुआ। जो शख्स ये करे कि जब बच्चा पैदा हो उसके बाल मुंडवाए और सूरत तगाबुन की पहली पांच आयात 40 बार अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक पढ़ के, और उसके बाद उसके मुताबिक हदीस में है चांदी या उतने पैसे वजन के मुताबिक सदका कर दें, और उन बालों को किसी पाक या मिट्टी में या कहीं कब्रिस्तान में दफन कर दें, ये जो अमल आप करेंगे ना कि बच्चे के बालों पे सूरत तगाबुन की पहली पांच आयात 40 बार पढ़नी है और जिंदगी में एक दफा पढ़नी है, अव्वल आखिर दरूद पाक 3 बार, अब इसके फायदे सुनिए। ये बहुत पुराना अमल है, फिर बात वहीं आ गई कि मैं वज़ाइफ बनाता नहीं हूं, बताता हूं। और किसी का अगर नॉलेज कम है, इल्म कमजोर है, और तो फिर उस नॉलेज कम और इल्म कमजोर वाले के लिए मैंने कहा है कि हमारा एक पेज है फेसबुक पे, वो है अकाबिर पर एतमाद, उसमें देखे कि वज़ाइफ हम बनाते हैं या बताते हैं। अब सुने बात, इसके फवायद सुनिए, कमाला सुने, किसके आखिरी दफा तरीका फिर बता रहा हूं, तीसरा और आखिरी दफा, बच्चे के बाल लें, बाल मुंडवाएं, बाल 7वें दिन मुंडवाते हैं, मुंडवाएं, बाल मुंडवाने के बाद उन बालों के ऊपर सूरत तगाबुन की पहली पांच आयात 40 बार पढ़ दें, बस अमल खत्म। उसके बाद बालों को फिर कहीं दबा दें। अब इसका जो फायदा बताऊंगा उस पर जरा आप तवज्जो से सुनिएगा। सूरत तगाबुन की पांच आयात उस पे लिखी हुई होती हैं, जो सिर्फ फरिश्ते पढ़ सकते हैं और अल्लाह का अमर ही पढ़ सकता है, हमें तो घुंघरियाले बाल ही नजर आते हैं। जिस बच्चे के बालों पे यह अमल कर लिए जाता है, अल्लाह उस पे हमेशा बड़ी खतरनाक बीमारियों के वारों से उसको अल्लाह बचाता है, अल्लाह उसकी आंखों को अंधा काना होने से, अल्लाह उसके कानों को बहरा होने से, और अल्लाह उसके जिस्म को तोड़ फोड़ से बचाता है, सेहतमंद बच्चा रहता है, सेहतमंद बच्चा। मैं कई सालों से यह अमल बता रहा हूं, इसके बाद मुझे रिजल्ट मिले, और मुझे रिजल्ट देने वालों ने बताया कि जो बच्चे पैदा हुए वाकियतन आपने जो बताई थी चीज, अल्लाह ने इससे उनकी बहुत हिफाजत फरमाई। बहुत अजीब चीज है। कमाल चीज, सूरत तगाबुन का यह अमल बहुत बाकमाल चीज, बहुत बहुत कमाल चीज। अब एक ऐसा बच्चा हादसात से ये बच्चा बचा रहता है, हादसात से बचा रहता है, बीमारियों से बचा रहता है, मुश्किलात से बचा रहता है। अल्लाह पाक पांच ऐसी ताकतवर फरिश्तों की ड्यूटियां इस पे लगा देते हैं जो इस पे पांच चीजें हमेशा रोके रहेंगे, इससे गुनाह, बदकारियां, सरकशियां और बेरह रवियां और दुश्मन के वार और शैतानी चीजों, जादू बंदिशों के वार और नजरे वार के वार अल्लाह पाक इससे फरिश्तियों की ड्यूटियां इस पे लगाते हैं और वो रोके रहेंगे। अजीब ताकत है, अजीब तासीर है, कलाम इलाही में ताकत है और इन चीजों में तासीर है और इन चीजों के अंदर बहुत ताकतवर तासीर है। अब आप चाहते हैं कि आप बच्चों को अस्पताल में लिए लिए ना फिरें, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आंखों की ठंडक बने, आप चाहते हैं आपका बच्चा फर्मा बरदार बने, आप चाहते हैं आपके बच्चे की उम्र दराज हो, आप चाहते हैं सोना जवान बने, आप चाहते हैं कि बच्चे की औलाद हो, बे औलादी का दाग उस पे ना लगे, तो मेरी मिन्नत है ये उसके पहले बालों पे अमल जरूर कर लीजिए। नस्लों की हिफाजत जहां जहां गिजाओं से है, जहां दवाओं से है, जहां तरबियत से है, जहां तालीम से है, जहां मां बाप की इच्छाओं से है, नस्लों की हिफाजत वहां कलाम इलाही के उन राजों से है जो इंसान को बजाहिर समझ नहीं आती, लेकिन अल्लाह सच्चा, अल्लाह का कलाम सच्चा, उसके वादे सच्चे, उसके वादे सच्चे हैं और ये हक है और ये सच है और ये ताकतवर चीजें मैं आपको बता रहा हूं और ये हकायक हैं और हकीकतें हमेशा हकीकतें होती हैं। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको इतनी देर से अपने इश्तिहार नहीं बता रहा, अपनी तारीफें, अपनी दवाओं के कमालात नहीं बता रहा, मैं आपको इतनी देर से अर्श की उतरी हुई दवाएं, अर्श की उतरी हुई शिफाएं, अर्श की उतरी हुई अदाएं और अर्श की उतरी हुई वफाएं, उनके तरीके, उनके फायदे, उनकी तदबीरें, उनके कमालात, उनकी तासीर बता रहा हूं। और जिंदगी में यही कामयाब तरीन चीजें हैं और जिंदगी में ये कामयाब तरीन तदाबीर हैं। आप बच्चे की जिंदगी के लिए, उसकी सेहत के लिए ये लाजिम कीजिए। जो नहीं कर सके तो वो तो न कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे तो रोज पैदा हो रहे और उनकी पैदाइश पे अमल रोज कर लीजिए, हर बार जब अल्लाह बच्चा अता फरमाए उसके ऊपर ये अमल कर लीजिए और जरूर कीजिएगा, इसकी बड़ी तासीर है। हादसों से बचना, बच्चे की तरबियत, बच्चे को आला इल्म, आला सलाहियत, दिमाग उसका रोशन रहता है और नजर रोशन, आसाब मजबूत और बच्चे की याददाश्त लाजवाब होती है। कलाम इलाही के पांच फरिश्ते उसकी हमा वक्त हिफाजत करते हैं और उस पे हमेशा छांव रखते हैं और उस पे हमेशा खैर और बरकत होती है। कोई आम चीज नहीं है, बहुत जबरदस्त चीज है और बहुत बाकमाल चीज है। और एक आखिरी टोटका बताता हूं, उस पर आप थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिए। आखिरी टोटका बताता हूं, बता दूं, हो जरूर सुनिएगा और जरूर कीजिएगा, जरूर सुनिएगा, जरूर कीजिएगा। कितना वक्त हो गया हमारी बात करते हुए? एक घंटा तो गुजर गया होगा। सवा दो घंटे बस हंसते खेलते ही गुजर गए, हंसते खेलते ही गुजर गए। और आपका ये खुलूस है, आपका ये सच्चा सच्ची तलब है। देखें, उठा कोई नहीं, हर बंदा जम के बैठा हुआ है और एक दो बंदे एहतियातन सो रहे थे, वो भी सोने से जाग गए, एहतियातन सो रहे थे। वो हमारे एक दोस्त ने ऐसे जेब से पर्स निकाला तो पर्स था नहीं, कहने लगे ओहो मैं एहतियातन अपना पर्स वॉलेट घर भूल आया। एहतियातन, तो कुछ लोग एहतियातन सो रहे थे, अब तो वो भी जाग गए। तो कुछ चीज बताऊं और है? या ना बताऊं? बच्चों के आला नंबरों के लिए या हसीब को बहुत आजमाया, बच्चों की आला पोजीशन के लिए, बच्चों की आला डिग्री के लिए, बच्चों को बेहतरीन नंबर मिले और बच्चे बेहतरीन किस्म के शहरी और मां बाप की आंखों की ठंडक। इम्तिहान से पहले सुनिएगा, 3300 दफा रोजाना पढ़ना है या हसीबो सिर्फ 3 दिन। कितने दिन? और इम्तिहान के बाद 3300 दफा रोजाना पढ़ना है या हसीबो 3 दिन या 11 दिन बस। और इम्तिहान के दौरान हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़नी है या हसीबो की अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक। बोले मुश्किल है, है? यह आसान है? कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान है। या हसीबो, अल्लाह जल्ल शानहु का मुबारक और सिफाती नाम है, या हसीबो, या हसीबो। बच्चों उनकी तरक्कियों उनकी कामयाबियों, आपको इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं इंटरव्यू कामयाब हो, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप कहते हैं वहां कामयाबी हो, तो 3 दिन या 11 दिन पहले, 3 दिन या 11 दिन पहले 3300 दफा पढ़ लें या हसीबो, या हसीबो, या हसीबो। 3 दिन या 11 दिन पहले पढ़ लें या हसीबो, और बाद में 3 दिन या 11 दिन पढ़ लें या हसीबो, और रोजाना एक तस्बीह हर नमाज के बाद या हसीबो। मैंने तो जिसको भी यकीन के साथ, एतमाद के साथ, तवज्जो ध्यान के साथ पढ़ते हुए सुना है, उसके मैंने तो बड़े फायदे पाए हैं, बहुत रिजल्ट पाए हैं, बहुत कमालात और बहुत बरकत पाई है इसके। कई लोगों ने मुझे इसकी तासीर बताई। या हसीबो, कोई बैठा है ऐसा जिसको या हसीबो को फायदे मिले हों? आपको मिले? बताएं, खड़े होके बता दीजिए। भाई मैं कोई, मैंने पहले से बंदा नहीं बैठाया हुआ, ना मैंने कोई अपनी दवाई बेचनी है, मैं अल्लाह के नाम के ये दुकान सजाए हुए हूं। हाँ जी, आपके बच्चों के तालीम कामयाब होते हैं। अच्छा भाई चलो, ये तो हुआ, इनका हाथ कांप रहा है, इसमें भी एक टोटका बता देता हूं, बैठ जाए। ले भाई ये भी हसीबों का फायदा है। सुभान अल्लाह, ये आजकल ये एक बीमारी है बहुत ज्यादा, इसको पकड़िएगा ऐसे, देख लें, कराची वालों का प्यार है। कहते हैं हर हर जो है महीने, तो भाई अल्लाह जानता है, आप जरूर आया करें। मैंने कहा अल्लाह जानता है, इसका क्या कौन करेगा। ये कराची वालों का प्यार है और आखिरी दर्जे का है। स्पीकर का निजाम ठीक ना हो ना, शोर लगाना पड़ता है, फिर बंदा ज्यादा देर नहीं बोल सकता, याद रखिएगा, बंदा ज्यादा देर नहीं बोल सकता। ये मेरे जो जिम्मेदार हैं कराची में रहने वाले, उन मुखलिसीन को इस पे जरा थोड़ी सी तवज्जो बढ़ानी है। तो क्या बात अर्ज कर रहा था, इस पे मैं गया मरी, हमारी मरी की रूहानी मंजिल है, उसका इंतकाल होना था, इसमें तहसीलदार की अदालत में। सर्दी थी, मैं बाहर धूप में बैठा हुआ था, तहसीलदार अभी नहीं आया था, मेरे साथ मेरे एक मोहसिन थे। एक बाबा जी को मैंने देखा कि वो लंडे के कपड़े ना, कोट जर्सियां ऐसे एक दीवार के साथ कील ठोंके हुए थे, वहां लटका रहा था, उसके हाथ ऐसे कांप रहे थे, ऐसे ऐसे कांप रहे थे। इसे हमारी तिब्बी जबान में राशा कहते हैं, और आज की मेडिकल साइंस में क्या कहते हैं, पार पार्किंसन ये कहते हैं। अच्छा, ये लाइलाज तरीन बीमारियों में से है दुनिया की। वो ऐसे ही कर रहा था, मैं उसको बैठा देख रहा था, धूप पे बैठा हुआ था, सर्दी तो नहीं थी लेकिन वहां सर्दी थी। तो मेरे जी में आया, मैं नीचे उतर गया, सीढ़ियां उतर के नीचे उतर के मैंने कहा बाबा जी ये क्या बीमारी है? कहने लगे ये बीमारी है हाथ हिलता है। मैंने कहा बाबा जी इसकी दवाई कर लें, इलाज कर लें। कहने लगे मैं कहता हूं दो तीन जर्सियां कोट बिट जाए तो बच्चों की रोजी हो, मैं इसके इलाज क्या करूं? कोई डॉक्टरों को दिखाया है, वो बड़ी महंगी दवाएं देते हैं, मैंने एक दो दफा खाई है फिर नहीं खा सकता। बाबा जी मैं आपको बीमारी का इलाज बता दूं, कर लेंगे? मैं हकीम हूं, मैंने जानबूझ के बताया। मैं बाबा मैं हिकमत किया हुआ मैंने, और हिकमत कई बार मैंने किताबें लिखी हैं, और मैंने अमेरिका से कैंसर पे जड़ी बूटियों पे पीएचडी की डिग्री ली है। बाबा जी मैं बड़ा हकीम हूं। मुझे ऊपर से ऐसे नीचे देखा, कहने लगे वो आए ना, कहने लगे हाय नी पैणा यही हकीम है। नहीं समझे आप, ये पंजाबी का एक खास अंदाज है। उसने मुंग उंगली पे हाथ रखा ना, उसने कहा हकीम होगा पेट वेट, बाबा जी बूढ़े चार बंदों ने पकड़ा हुआ, हटो बचो, जिसका गाड़ी भी नाम नहीं उठाती, गाड़ी ना नहीं चेंदी, वो ऐसा हकीम होगा। उन्होंने कहा हाँ नहीं पैणा यही हकीम है। बाबा जी मैं हकीम हूं। अच्छा, ऐसे नीचे देख के कहने लगा फिर क्या बताएगा? मैंने कहा बाबा जी दो चीजें बताऊंगा, भुने हुए चने और मुनक्का आपका इलाज है, बड़ी किशमिश और भुने हुए चने ये आपका इलाज है। बस भुने हुए चने जो जिस पे छिलका भी हो, छिलका ना उतारिएगा, छिलका हो, छिलके उतरे हुए चने अपने आधे फायदे खत्म कर जाते हैं, और चनों में इतनी ताकत तो है, घोड़े की सबसे बेहतरीन गिजा चना है, और आपकी जितनी भी दुनिया की पावर है वो हॉर्स पावर के नाम से उसका शुमार होता है, पैमाना घोड़ा है, हॉर्स पावर घोड़े की ताकत। हॉर्स किसको कहते हैं? घोड़े को कहते हैं। तो बात तो मैं यह हसीबों की बता रहा था, लेकिन इनके कांपते हाथ को देख के मैंने कहा भाई ये इस मर्ज में जा रहे हैं, तो अभी से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से भुने हुए चने और बड़ी किशमिश जिसे मुनक्का कहते हैं, बड़ी किशमिश, उसमें से कोई बीज वगैरह नहीं निकालना, बस दोनों को कूटना भी नहीं है, इकट्ठा करके रख ले, मुट्ठी भर सुबह दोपहर शाम खा लिया करें, चंद दिनों में रिजल्ट देखें। कमाल है, शुगर के मरीज बिना तकल्लुफ इस्तेमाल करें। बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत बाकमाल चीज है। अच्छा, मैंने क्या किया, एक साहब को दिए पैसे, मैंने कभी सदके की नियत कर लूं, चलो इस गरीब को कर लो, मैं कोई इतना बड़ा सखी नहीं हूं। मैंने दिए पैसे, मैंने भाग के ना 2000 से ये लिया, और एक किलो वो लिया, एक किलो वो लिया, जितने के आए वो ले आया। मैंने बाबा जी मेरी तरफ से तोहफा है आपको, इनको साफ कर लीजिएगा आपस में मिक्स करके, और इसके बाद इसको खाएं, रोजाना खा लिया करें, और बच्चों और बड़ों की पहुंच से दूर रखना है। बड़ी देर से समझ आए, ये यारी है आपकी, देख ले, कहते हैं कराची बार बार आ, बच्चों और बड़ों की पहुंच से दूर रखें, वरना कोई छोड़ेगा ही नहीं, वरना कोई छोड़ेगा ही नहीं। अच्छा, मैं देख के आ गया, तहसीलदार से वो काम कराना था, वो हो गया, मरी की भूरबन की रूहानी मंजिल अल्लाह ने बनवा दी। अच्छा, मैं फिर कुछ अरसे के बाद वहां एक और साहब है मिलने गया, उधर से गुजरा, मैंने कहीं एक बाबा जी थे, मिलूं तो सही, बाबा जी ने क्या किया और हुआ क्या? मैंने कहा पता नहीं फौत हो गए जिंदा है। अच्छा, ऐसे 100 सोचे, 100 ख्याल, 100 गुमान। मैं वहां गया तो बाबा जी बैठे हुए थे, कपड़े लटके हुए थे, वही कोट जर्सियां वगैरह लंडेगी। तो तो मैंने जाके सलाम किया, मैं कहा बाबा जी वही लाहौर का हकीम हूं, बड़ा हकीम हूं मैं। वो दया था, बाबा जी मिले बड़े शौक से, और जब मैं मिले ना तो उनके हाथों की वो मैंने वाइब्रेशन चेक की, वो नहीं थी। अच्छा पहले ना मुझसे ऐसे हाथ, जब मैंने पहली बार मिलाया था तो हाथ मिलाते भी उनका हाथ कांप रहा था और मेरा जिस्म बकायदा खुद मेरे हाथ पे एहसास हो रहा था, अब नहीं था। बाबा जी के साथ पड़ी हुई थी, एक पत्थर पड़ा हुआ था, मैं उसके ऊपर बैठ गया। मैंने कहा क्या हाल है? कहने लगे मैंने वो खाना शुरू किया तो उससे तो और बड़े फायदे हुए, मेरी नजर खत्म हो गई थी, मुझे अब सही नजर आना शुरू हो गया। अच्छा है, चने तो चने हैं। एक मुगल बादशाह ने ना अपने वाले साहब फौत नहीं होते थे, अब बाबा जी मरे हैं तो एक ददार आए, एहतियातन अब्बा जी को कैद कर दिया कि अब्बा जी बूढ़े हो गए, को मेहरबानी करो कि मजे हमें भी लेने दो इक्तदार के, आप तो मरते नहीं उम्र दराज मांग के लाए थे। तो अब्बा जी को एहतियातन एक महल में कैद कर दिया। तो अब्बा जी ने कहा अच्छा बेटा अगर कैद कर दिया है तो चलो दो चीजें तो दे दे, एक चने दे दे और एक बच्चे दे दे, मैं बच्चे पढ़ाता रहूंगा। बेटा कहने लगा अब्बे से अभी भी बादशाहत और सुल्तानियत नहीं गई, चने आखिरी शाही गिजा है और बच्चे सबसे बड़ी हुक्मरानी है। ओए बच्चे चुप कर, इधर बैठ, इंसान का बच्चा खड़ा हो जाओ, बैठ जाओ, समझ गए? हाँ उस्ताद बादशाह होता है, शहनशाह किंग होता है, और जो मास्टर होता है उसकी बीवी के साथ मामला अक्सर कमजोर होता है। हुक्मरानी घर में चल नहीं सकती, मास्टर साहब की बीवी के झगड़े अक्सर होते हैं। तो कहने लगा अच्छा अच्छा अच्छा, पता चल गया अब्बा जी अभी भी हुक्मरानी चाहते हैं। चलो कोई बात नहीं, अब्बा जी ने एक तदार तो दे दिया, बच्चे भी दे दो चने भी दे दो। हालांकि अब्बा जी को सारी शाही गिजाएं मिल रही थी, सिर्फ एहतियातन नजर बंद किया हुआ था कि अब्बा जी फौती नहीं होते। ये मुगलिया दौर के एक बादशाह की बात है, सच्ची है, अफसाना नहीं है। बाबा जी मरी वाले बिल्कुल ठीक और बेहतरीन फिटनेस, और पता क्या फायदा बताया, कहने लगे मेरी नजर तेज हो गई, मेरी याददाश्त तेज हो गई, मैं पहले उठते बैठते हुए सहारा लेता था, सहारा नहीं लेता। और इसके अलावा और भी ऐसे फायदे बताए जो मैं ना बता सकूं, बस हां। बुढ़ापे की गोली, जवानी का चूरन। ये कुदरती हाथ के हिलने से नुस्खा सामने आया और वाकया बहुत अजब चीज है, ये कमाल चीज है, बहुत ज्यादा बहुत अजब चीज है। थोड़ा थोड़ा खाते रहे, वास्तविक ऐसी होती, उनका थोड़ा बर्दाश्त है, बस ज्यादा बर्दाश्त है, दिन में तीन चार दफा कोई कूटना नहीं, बस। मुल्तान में एक होते थे बुजुर्ग हकीम फिरोजदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो उनकी जेब में ये दोनों चीजें होती थी, वो कहते थे मुंह खोल जल्दी कर मुंह खोल, आ आ कर, मैंने कहा हाथ में दे दे मेहरबानी कर, इंसान बन के मुंह खोल। फिर मैं मुंह खोलता, वो मुट्ठी भर के मुंह में दबाते थे, करे अब मुंह बंद कर ताकि नीचे ना गिरे। हर किसी को ऐसे, और यही दो चीजें होती थी। और वो कहते थे बात सुनो, मैं शिकारी हूं, सुअर का शिकार करता हूं, खरगोश का शिकार करता हूं, पानी में रहता हूं। और पता है फौत कैसे हुए, फौत कैसे हुए, आखिरी अशरे में 27 की रात को सुबह उठे, आके सहरी में गुसल किया, और गुसल करने के बाद बेहतरीन खुशबू लगाई और सजदे में जाके अल्लाह के पास चले गए। हां रे, जबरदस्त आदमी थे, बड़े अल्लाह वाले थे, अल्लाह के पास चले गए। और एकदम मुझे कहने लगे ओए जवानी दरा, जब मैं जवान था, ओए जवानी दरा, एक और को बुलाया ओए दरा इधर आ, तीन चार जवानों को बाजू ऐसे करके कहने लगे मेरा बाजू यूं से यूं करके दिखाओ। उस वक्त 70 साल उम्र थी, कितनी मैं लगा हुआ, मेरे साथ कोई इधर से खींच रहा, कोई इधर से खींच रहा, बाबा यूं करके बैठ रहा। कहने लगा मां का दूध इस्तेमाल करो, हमें मजीद खैरत दिलाए। हाँ और लगाओ। कहां? कहने लगा चलो छोड़ दो, अब मुंह खोलो जल्दी करो सारे। और जेब में हाथ डाला, सबके मुंह में ये ठोंस दिया। कहने लगा ये खाया करोगे मेरी तरह हो जाओगे, और साथ वर्जिश भी करना। तो बात तो चल रही थी या हसीबों की, ऐसे आपने बच्चों का यही बताया था ना, ये चलते चलते यहां पहुंच गए, उसको ढूंढने निकले थे और अपना आप गंवा बैठे। पागल जागती आंखों में हम कैबे कैसे ख्वाब सजा बैठे। या हसीबों अजीब चीज है, और इसके अंदर अजब ताकत है, इसके अंदर अजब ताकत है। या हसीबों बहुत अजीब चीज, बच्चों के लिए, उनकी तरक्कियों के लिए, उनकी उनके नंबरों के लिए और इंटरव्यू में कामयाबी के लिए। या हसीब, बात खत्म ना कर दें आप। खुशबू, शरबत वाला मैंने ड्रिंक का दिया तो है, छोटी इलायची बड़ी इलायची हो वो मैंने दिया तो है। इतर वाला ऐसे फायदा हो जाएगा खामखा आपको, खामखा फायदा हो जाएगा। जो शख्स तीन चीजें करेगा तीन चीजें मिल जाएंगी। चले सुन ले, जो शख्स तीन चीजें करेगा तीन चीजें मिल जाएंगी, खुशबू, हर वक्त बावजू रहना और सफेद लिबास पहनना। तीन चीजें, खुशबू, हर वक्त बावजू रहना और सफेद लिबास पहनना। और जिसका पेशा या जेब सफेद लिबास हर वक्त पहनने की इजाजत नहीं देती, कभी कभी इस नियत से पहन लिया करे। पेशा, कोई ऐसा पेशा होता है कि एक पल में लिबास उसका मैला हो जाता है। या जेब, जेब और सफेद लिबास से मुराद कोई आला महंगा कॉटन नहीं, जो भी मयसर हो, सफेद लिबास सस्ते से सस्ता जो भी मयसर हो वही मयसर। और अगर नहीं हर वक्त पहन सकता तो भी कोई हर्ज नहीं, एक जोड़ा बना ले, दो जोड़ा बना ले, जुमे के दिन पहन ले, रोज एक वक्त में पहन ले। मैंने एक बंदे को एक और तरीका बताया, मैंने कहा रात वाले सूट एक बना ले, कुछ सस्ता सा, रात को ढीला ढाला सफेद लिबास पहन के सो जाया। उसका पेशा ही बेचारे का ऐसा था कि वो सफेद लिबास पहन ही नहीं सकता था। मुझे कहने लगा जी वाकईतन आपने सही बताया, मेरे साथ ऐसा हो गया। और क्या हुआ जरा सुनिए, तीन चीजों के बदले तीन चीजें। तीन चीजें कौन सी? खुशबू, हर वक्त बावजू रहना और सफेद लिबास। तीन चीजों के बदले तीन चीजें क्या? इसकी तरफ दौलत, इज्जत और सुकून ऐसे आएगा जैसे पहाड़ से गिरा हुआ पानी नीचे किस जोर से आता है। खुशबू लगाना नहीं थपना है, एक है थपना, थपना समझते बहुत ज्यादा लगाएं, लगाने नहीं है ज्यादा लगाएं, ज्यादा लगाएं। मैंने उस दिन क्या किया, मेरी वेस्ट कोट है ना, मैंने यहां से शीशी रखी सूरी, उसका वो निकाल लिया सब कुछ या नीचे तक, कमीज भी मेरी थोड़ी सी उस पे इतर पे लग गई तो क्या हर्ज है, सारी वेस्ट कोट में इस तरफ पूरी शीशी खत्म। हमारे एक दोस्त है कराची के, वो क्या करते हैं, वो एक और तरीका करते हैं, अंदर की बुनियान पहनते हैं ना पहले बुनियान, तो शीशी खोल के हथ इतर पे ऐसे डाल देते हैं, पहले थोड़ी सी ऐसे मलते हैं बुनियान को, सारा मल लेते हैं, फिर दूसरी, फिर पूरी शीशी पर यूं 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 करते हैं, उसे झाड़ते हैं, झाड़ के सारी शीशी एक दफा लगा के कहते हैं बेहतरीन हो गया। वो बुनियान पे सारा इतर चिपक जाता है, कपड़े भी खराब, जाहिर उसका रंगदार नहीं होता, और वो लगाते हैं। चलो आप इतनी ना लगाएं, कुछ तो लगा लें। देखो भाई अब इसके फायदे तो पहले आपने सुन लिए, एक फायदा और बताऊंगा। फरिश्तों की गिजा खुशबू है, नेक जिन्नात की गिजा खुशबू है, और जिनको आप गिजा दे रहे हैं तो फिर एक लफ्ज भी सुन ले, मुंह खावे ते अख शर्मावे, मुंह खावे अख शर्मावे। उसने उसकी गिजा तो आपने दे दी, फरिश्तों को गिजा दे दी, जिन्नात की गिजा दे दी, उनका मुंह खा रहा, अब वो आपके साथ तामन करेंगे, मदद करेंगे अल्लाह की हुक्म से, और आपके साथ मदद करेंगे, आपकी हिफाजत करेंगे, आपके साथी बनेंगे, आपके इर्द गिर्द हादसात, जादू, बीमारियां, नजरें बद, दुश्मन के वारों से आपको बचाएंगे। अब ये फरिश्ते और नेक जिन्नात अल्लाह के हुक्म से आपके सिक्योरिटी गार्ड है। कई वाकयात उस्ताद जी ने मुझे बताया, मौलाना अब्दुल मजीद साहब थे रहमतुल्लाह अलैह, बाबुल उलूम केरोड पक्का के बहुत बड़ी हस्ती थे, मैं खड़ा था, मुझे खुद बताया ये बिलियां मेरे शागिर्द हैं, जिन्नात हैं, हर जगह मेरे साथ होते हैं, मेरी हिफाजत करते हैं, मुझे खुद बताया। और बिलियों को कहने लगे ये हमारे हकीम साहब हैं, बड़ी मुश्किल से इनसे टाइम लेना पड़ता है। ये देखें, ये फरिश्ते जिन्नात नेक उस बंदे की हिफाजत करते हैं, उस बंदे की हिफाजत करते हैं। खुशबू का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करें, हमारे मुआशरे में खुशबू का रिवाज नहीं है। अरब का गरीब से गरीब की जेब में छोटी सी बोतल खुशबू की होगी, आपको भी लगाएगा, दूसरों को भी लगाएगा। अरब का गरीब से गरीब, हम वो महंगे स्प्रे ले आते हैं जिसमें अल्कोहल होता है, खुशबू अच्छी से अच्छी खुशबू का इंतखाब, और तेज खुशबू ना लगाइएगा, ये मेरी मिन्नत है। खुशबुओं का जिंदगी पे बड़ा असर होता है, तेज खुशबू ना लगाइएगा जिसमें बंदा जगते ही बंदा बेहोश हो जाए ना। हल्की खुशबू, हिना की खुशबू, गुलाब की खुशबू, फवाके खुशबू है, चमेली की खुशबू, हल्की लाइट वो खुशबू लगाएं, तेज खुशबू ना लगाएं। एक पर्ची है कि खवातीन हजरात बैत होना चाहती हैं, मुनासिब समझे तो बैत फरमा दें, जो पहले से बैत हैं वो भी, जो मौजूदा बैत होना चाहते हैं पहले से बैत तजदीद बैत कर लेंगे, और जो मौजूदा बैत होना चाहते हैं वो भी, जो कलिमात पढ़ाता जाऊं मेरे साथ पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह बैत हो जाएंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه। يا الله मैंने बैत की हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला हजवेरी के सिलसिले, या अल्लाह मेरी बैत को कबूल फरमा। अल्लाह मुबारक करे, बैत की तीन तस्बीहात सुबह शाम करें, तीसरा कलमा दरूद शरीफ इस्तिगफार तिलावत तस्बीहात नमाज बाजमात का एहतमाम करें, और अपने मामलात हम अखलाक मामलात लेन देन पे बहुत नजर डालें, और सबसे ज्यादा नफा उसको होता है जो राबते में रहता है। दर्श एक बेहतरीन राबता है, मैं खुद भी दर्श में राबते का मोहताज हूँ, आप भी मोहताज हैं, तो दर्श मुसलसल किसी न किसी शक्ल में सुनते रहें तो इंशाअल्लाह राबते में रहता है। दुरूशी पढ़ें, दुआ कराते, अल्लाहुम सल्ले अला मुहम्मद अब्दिक व रसूलिक, सल्ले अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, या अव्वलुल अव्वलीन व या आखिरुल आखिरीन, या ज़ल कुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकीन, या अरहमर राहिमीन, या करमल अकरमीन, या अजवदल अजवदीन, या जल जलाल वल इकराम, रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार, व अदखिलिल जन्नत मअल अबरार, या अज़ीज़ु या गफ्फार, रब्बि इन्नी लिमा अंज़ल्ता इलैया मिन खैरिन फकीर। या अल्लाह हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत और मार्फत के लिए कबूल फरमा, दिल की दुनिया आबाद फरमा, मन की दुनिया शाद फरमा, हमारे जज्बों को मुअत्तर फरमा और सच्चा कर दे, اللہ ہماری نیتوں کو پاک کر دے، ہماری نظروں، ہماری تنہائیوں کو پاک کر دے، ہمارے حال پہ فضل کے رحم کے دروازے کھول دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہمارے مسائل حل کر دے۔ مولا بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، مشکلات حل کر دے، پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ تو کریم ہے، جو کریم چاہتا ہے ہو جاتا ہے، اپنی شانی کریمی کے صدقے ہمارے ساتھ عافیت کے معاملے فرما اور فضل کے معاملے فرما۔ اس محفل میں سفید بالوں والے بھی ہیں اور اے اللہ بوڑھے بھی ہیں، اور پر نظروں کی پاکیزہ کرنے والے جوان بھی ہیں اور توبہ کرنے والے جوان بھی ہیں، اور اے اللہ تیری نیک عصمت تیری بندیاں بھی ہیں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما اور سب کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے یہ خالی کشکول ہیں، اللہ ان کشکولوں کو بھر دے، خالی نہ بھیج، ان کشکولوں کو بھر دے، رزق سے، صحت سے، برکت سے، عافیت سے اور اپنے فضل و کرم سے ان کشکولوں کو بھر دے۔ ہماری نامرادیوں کو مرادوں میں بدل دے، ہماری مشکلوں اور پریشانیوں میں ہمارے حال پہ فضل فرما اور ہمارے حال پہ کرم فرما، اور ہماری مصیبتیں دور فرما، مشکلیں حل فرما، پریشانیاں دور فرما، ذلت، علت اور قلت سے نکال دے۔ آخری وقت میں ہم سے ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے کلمہ نہ چھین لے۔ اے اللہ بری موت سے بچا، سوئے خاتمہ سے بچا، ہمیں عافیت عطا فرما اور برکت عطا فرما، بن مانگے صدا عطا فرما۔ سخی آقا در در کا بھکاری نہ بنا، اپنے در کا بھکاری بنا، اپنے در کا سوالی بنا، اپنے در کا محتاج بنا۔ اے ساری کائنات کو دینے والے اللہ ہمارے خالی کشکول بھر دے۔ جتنی بہنیں اور بھائی آئے ہیں ان سب کی حاضری قبول فرما اور ان کی مرادیں پوری فرما اور ان کی مشکلیں حل فرما اور ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ وہ دے جو یہ چاہتے ہیں، وہ بھی عطا فرما جو آئندہ چاہیں گے، اور وہ بھی عطا فرما جو آئندہ ضرورت ہے۔ یا اللہ ان کی نسلوں کو فاقوں سے بچا۔ آج تو مولا تو نے آیت تو نے دولت بھی دی ہے، رزق بھی دیا، صحت بھی دی، عافیت بھی دی، کل آنے والے کوئی خبر نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نسلیں گلی گلی مانگیں اور گلی گلی ذلیل ہو جائیں یا کسی نشے اور کسی علت میں مبتلا ہو جائیں۔ اے میرا مولا سخی آقا، ہمیں اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما اور کفایت فرما اور کفالت فرما اور مدد فرما۔ ذلت و رسوائی کی ساری راہیں ہم سے ہٹا دے اور عزت اور آبرو کے سارے راستے کھول دے۔ بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما۔ ہمارے حال کو نہ دیکھ بس اپنی رحمت کو دیکھ۔ کوئی ہم میں سے تیرا محبوب بیٹھا ہو جس کی وجہ سے تو کبھی دعائیں نہیں ٹالتا، تو اپنی رحمت کو ہمیشہ بھیجتا ہے، اس کی وجہ سے سارے مجمع کو عطا کر دے، سارے مجمع کو دے دے، ساری مجمع کی ضرورتیں پوری کر دے، سارے مجمع کی مشکلیں حل کر دے، سارے مجمع کی ضرورتیں پوری کر دے۔ بے گھر کو گھر دے دے، بے در کو در دے دے، بے اولاد کو اولاد دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، دے دے مولا مولا، بھکاریوں کو دے دے۔ اللہ ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں، ہم بے سہارا ہیں، تو بے سہارا نہیں۔ اے مولا ہم محتاج ہیں، تو محتاج نہیں، ہمیں دنیا بھی دے دے، آخرت بھی دے دے، رزق بھی دے دے، صحت بھی دے دے، اولاد بھی دے دے، آخری وقت کا کلمہ بھی دے دے، اپنے حبیب کی رضا بھی دے دے، جنت کا ٹھکانہ بھی دے دے، اور چہرے کی رسوائیوں سے بچا، چہرے کی رسوائیوں سے بچا، اور اپنی رحمت سے ہمیں نہ دھتکار دے۔ آج بھی دنیا عطا فرما، آخرت عطا فرما، کل بھی اپنی رضا عطا فرما، میرے وطن کی حفاظت فرما، حکمرانوں کی کیفیتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مالدار، غریب، فقیر، وزیر، مشیر، سب کی حفاظت فرما، سب کی کفایت فرما، سب کی کفالت فرما۔ میرے وطن کی سرحدوں کی حفاظت، چھاونیوں، کچہریوں کی حفاظت، ایوانوں کی حفاظت فرما۔ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما۔ جو مرادیں لے کر تیری بندیاں اور بندے آئے ہیں، مولا منہ پہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی ضرورتیں پوری فرما، سب کی مشکلیں حل فرما اور عطا فرما. دے مولا سخی کریم آقا دے دے، ہم بھکاریوں کو دے دے، ہماری دنیا بھی بہتر فرما، ہماری آخرت بھی بہتر فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.